देखिए भाई किताब पर आगे सबक। अल कलाम फिल लुगति मा युतकल्लम बिही कलीलन कान औ कसीरा वफी इस्तिलाहिन नुहाति मा तजम्मना अय लफ्जुन तजम्मना कलिमतैन हकीकतन औ हुक्मन अय यकूनु कुल्लु वाहिदतिन मिन्हुमा फी ज़िम्निही فالمتضمن اسم فاعل هو المجموع والمتضمن اسم مفعول كل واحدة من كلمتين فلا يلزم اتحادهما بالإسناد أي تضمنا حاصلا بسبب إسناد إحدى الكلمتين إلى الأخرى. گزشتہ سبق میں آپ نے پڑھا تھا صاحب کافیہ نے فرمایا تھا وَقَدْ عُلِمَ بِذَلِكَ حَدُّ كُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهَا کہ اس وجہ حصر کے ذریعے جان لیا گیا ان اقسام ثلاثہ یعنی اسم فعل اور حرف ان میں سے ہر ایک کی تعریف کو. تو وَقَدْ عُلِمَ بِذَلِكَ عبارت آئی تھی. میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ بھئی جب ایک دفعہ ایک چیز کو ذکر کر دیا جائے تو پھر دوبارہ اس کو ضمیر کے ساتھ ذکر کیا جاتا ہے. لہذا ماتین کو یوں کہنا چاہیے تھا وَقَدْ عُلِمَ بِهِ, پیچھے ایک مرتبہ وجہ حصر ذکر ہو چکی ہے تو اب ضمیر لا کر اس کی طرف اشارہ کرنا چاہیے تھا. لیکن صاحب کافیہ نے ضمیر کے بجائے اس میں اشارہ استعمال کیا. سب سے پہلے میں نے آپ کو یہ بتلایا تھا کہ یہ جو اس میں اشارہ ہے اس کو وضع کیا گیا ہے محسوس اور مبصر چیزوں کے لیے. محسوس اور مبصر چیزیں یعنی وہ چیزیں جو آنکھوں سے دکھائی دیں, لیکن اس کو غیر محسوس اور غیر مبصر چیزوں یعنی معقولات کے لیے بھی استعمال کر لیا جاتا ہے. کبھی کوئی ایک چیز ہوتی ہے وہ آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتی, مثلا ایک معنی ہے, ایک مفہوم ہے جو ذہن میں سمجھ میں آ رہا ہے, اس کی طرف اشارہ کرنے کے لیے بھی اس میں اشارہ کو استعمال کر لیتے ہیں. اور گویا اس میں یہ دعویٰ ہوتا ہے کہ یہ جو معنی ہے یہ اتنا واضح ہے کہ یہ کس کے درجے میں ہے, محسوس اور مبصر کے درجے میں ہے. جیسے محسوس اور مبصر چیز آنکھوں کے سامنے جو چیز ہو جو دکھائی دے رہی ہے اس میں کسی قسم کا شک اور شبہ نہیں ہوتا, وہ بالکل واضح ہوتی ہے, نمایاں ہوتی ہے. اسی طرح بعض اوقات کوئی عقل میں آنے والا مفہوم یا معنی جو ہے وہ اتنا واضح ہوتا ہے کہ اس کے لیے پھر ذالکا یا حاضہ وغیرہ اس میں اشارہ استعمال کر لیا جاتا ہے. تو یہاں پر ضمیر کے بجائے اس میں اشارہ لے کر آئے, اس کو کہتے ہیں وضع المظہری موضع المزمر. یہ یوں کہیں وضع الظاہری موضع الضمیر, اس میں ظاہر کو رکھنا کس جگہ پر, ضمیر کے مقام میں. میں نے بتلایا تھا ایک ہے اس میں ظاہر اور ایک ہے ضمیر. یہ اس میں ظاہر ضمیر کے مقابلے میں ہے. دنیا کے تمام اسم آپ اکٹھے کر لیں اور اس میں سے ضمیریں نکال دیں تو باقی تمام اسم جو ہیں وہ اس میں ظاہر کہلائیں گے. تو اس میں اشارہ بھی ضمیر نہیں تو وہ بھی کیا ہے, اس میں ظاہر. تو کبھی کبھار کلام عرب میں ایسا کیا جاتا ہے کہ مقام تو ہوتا ہے ضمیر کا لیکن اس کی جگہ کو اس میں ظاہر لے آتے ہیں. جیسے یہاں پر مقام تو تھا ضمیر کا کہ بھی ہی کہا جاتا لیکن صاحب کافیہ کیا لے آئے, بذالک اس میں اشارہ لے آئے. تو اس کو کیا کہتے ہیں, وضع المظہری موضع المزمر, یا یوں کہیں وضع الظاہری موضع الضمیر, ضمیر کے مقام پر اس میں ظاہر کو رکھ دینا. اور اس میں کوئی نقطہ ہوتا ہے, کوئی نقطہ ہوتا ہے. جیسے یہاں پر نقطہ کیا ہے کہ گویا صاحب کافیہ یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ یہ جو میں نے وجہ حصر ذکر کی یہ اتنی ظاہر ہے کہ گویا یہ محسوس اور مبصر کے درجے میں ہے. جیسے محسوس اور مبصر چیز بالکل واضح اور نمایاں ہوتی ہے, اسی طرح یہ جو وجہ حصر بھی ہے بالکل واضح اور نمایاں ہے, خوب اچھی طرح سمجھ میں آنے والی ہے. وضع الظاہری موضع الضمیر جو ہے اس میں ہمیشہ کوئی نہ کوئی نقطہ ہوتا ہے, جیسے یہاں پر میں نے بیان کر دیا. اسی طرح ایک شعر ہے, مجنو جو ہے جو لیلہ سے عشق کرتا تھا اس کا ایک شعر ہے, باللہ یا زبیات القاع قلنا لنا لیلا من کن ام لیلا من البشر, کہ اے جنگل کی ہرنیوں تمہیں اللہ کا واسطہ ہے, تم مجھے بتلاؤ تو صحیح کہ میری جو لیلا ہے وہ تم میں سے ہے یعنی کوئی ہرنی ہے, ام لیلا من البشر, یا کس میں سے ہے لیلا, بشر یعنی انسانوں میں سے ہے. تو मजनू जो है अपनी लैला की तारीफ कर रहा है और अपनी हैरत का इजहार कर रहा है कि जैसे हिरनी बड़ी खूबसूरत होती है, उसकी आंखें बेइंतहा हसीन होती हैं, इसी तरह मेरी लैला भी बड़ी हसीन है और मुझे मालूम नहीं कि लैला इंसानों में से कोई इंसान है या हिरनियों में से एक हिरनी है। भाई तो देखो मकाम इस्तिशहाद यहां क्या है, लैला या मिनकुन्ना, क्या मेरी लैला तुम में से है, अम लैला मिनल बशर, या लैला किस में से है, बशर में से है। भाई एक दफा जब लैला का जिक्र आ गया तो आगे कहना चाहिए था अहिया मिनल बशर, क्या वो किस में से है, इंसानों में से है, लेकिन जमीर के बजाय इसमें जाहिर को दोबारा जिक्र कर दिया। बतलाना यह चाहता है कि यह लैला का नाम भी मुझे बड़ा महबूब है, इसको जितनी दफा भी जिक्र करें यह उतना ही मुझे महबूब और पसंद है। भाई बात समझ में आ गई, तो जब भी इसमें जाहिर को जमीर के मकाम पर रखा जाता है उसमें कोई न कोई नुकता होता है। तो साहिब काफिया फरमाते हैं कि वक़द उलिमा बिज़ालिका हद्दु कुल्ली वाहिदिन मिन्हा, कि ये जो मैंने वजह हसर जिक्र की इसके जरिए हर एक की हद यानी जामे मानिया तारीफ आपको मालूम हो गई। और फिर शारह जामी ने आपको बताया भी कि किस तरह मालूम हुई थी कि वजह हसर इन्होंने क्या जिक्र की थी, कि कलिमा या तो वो अपने माना पर खुद ब खुद दलालत करेगा या नहीं करेगा, अगर ना करे तो वो हर्फ है, अगर करे तो फिर उसके साथ तीन जमानों में से कोई जमाना मिला होगा या नहीं मिला होगा, अगर मिला हो तो वो फेल है, अगर ना मिला हो तो वो इसम है। तो इससे आपको तीनों की तारीफ भी समझ में आ गई कि कलिमा किसे कहते हैं, जो अपने माना पर खुद ब खुद दलालत न करे बल्कि कोई और कलिमा साथ जोड़ना पड़े फिर उसका माना समझ में आए, और फेल की तारीफ भी आपको समझ में आ गई कि वो कलिमा है जो अपने माना पर खुद ब खुद दलालत करता है और उसके साथ तीन जमानों में से कोई जमाना भी मिला होता है, और इसम की तारीफ भी आपको समझ में आ गई कि इसम वो है जो अपने माना पर खुद ब खुद दलालत करता है और उसके साथ तीन जमानों में से कोई जमाना मिला हुआ नहीं होता। तो हर एक की तारीफ समझ में आ गई और हर एक दूसरे से मुमताज हो गया, हर्फ फेल और इसम से मुमताज हो गया। हर्फ किस तरह अलग है, किस तरह मुमताज है, कि ये अपने माना पर मुस्तकिलन दलालत नहीं करता जबकि फेल और इसम करते हैं, और फेल भी इसम और हर्फ दोनों से मुमताज हो गया। फेल हर्फ से भी अलग है और इसम से भी अलग। हर्फ से किस तरह अलग है कि फेल मुस्तकिल है दलालत करने में अपने माना पर और हर्फ मुस्तकिल नहीं, और इसी तरह फेल इसम से भी जुदा है कि फेल के अंदर तीन जमानों में से कोई जमाना भी मिला हुआ होगा उसके मफहूम के साथ और जबकि इसम में जुड़ा हुआ नहीं होगा, और इसम भी जुदा हो गया हर्फ से भी और फेल से भी। हर्फ से कैसे जुदा हुआ कि हर्फ अपने माना पर मुस्तकिलन दलालत नहीं करता जबकि इसम अपने माना पर मुस्तकिलन दलालत करता है, और इसम जो है फेल से भी जुदा हो गया कि इसम जो है उसके साथ तीन जमानों में से कोई जमाना नहीं मिला होता और फेल के साथ जमाना मिला होता है। तो तीनों मुमताज हो गए, एक दूसरे से जुदा हो गए, हर एक की तारीफ समझ में आ गई, ऐसी प्यारी वजह हसर जिक्र की साहिब काफिया ने। फिर यहां पर फिर इश्काल होता था कि वक़द उलिमा बिज़ालिका हद्दु कुल्ली वाहिदिन मिन्हा, कि इस वजह हसर के जरिए इसम फेल और हर्फ तीनों की तारीफ हद, तीनों की हद मालूम हो गई यानी जामे माने तारीफ मालूम हो गई। तो इस पर इश्काल होता था कि मुसन्निफ को हद नहीं कहना चाहिए था, रस्म कहना चाहिए था। वक़द उलिमा बिज़ालिका रस्म कुल्ली वाहिदिन मिन्हा, रस्म का लफ्ज इस्तेमाल करना चाहिए था। मैंने बतलाया था एक होती है हद और एक है रस्म, किसी चीज की तारीफ हकीकी होती है उसको हद या रस्म कहते हैं, और हद इसको उस वक्त कहते हैं जब यह फसल पर मुश्तमिल हो, और रस्म इसको उस वक्त कहते हैं जब यह खासा पर मुश्तमिल हो। फसल आपने पढ़ा है मंतिक के अंदर, फसल वो कुल्ली है जो किसी चीज की जात में दाखिल होती है, किसी चीज की जात में दाखिल होती है, उसकी जात का जुज होती है, उसकी जात का हिस्सा होती है और उसको दूसरी तमाम चीजों से जुदा कर देती है। जैसे इंसान के लिए नातिक है, इंसान की हकीकत क्या है, हैवान नातिक, ये दो जुज, एक हैवान एक नातिक, ये दो जुज मिले तो इंसान बना, तो ये इंसान की हकीकत में और जात में दाखिल है नातिक भाई, और ये नातिक क्या करता है, इंसान को तमाम हैवानात से तमाम चीजों से जुदा कर देता है। इसी तरह इंसान की एक सिफत है कि वो जाहिक है, अल्लाह ने उसको हंसने की सिफत नसीब फरमाई है। इंसान जब किसी अजीब चीज का मुशाहिदा करता है, किसी अजीब चीज का इदराक करता है, तो उसको ताज्जुब लाहिक होता है और फिर उसको हंसी आ जाती है। तो इंसान को अल्लाह ने जाहिक यानी हंसने वाला बनाया है, और यह हंसना इंसान की सिफत है, इंसान की हकीकत में दाखिल नहीं है। तो नातिक वो भी इंसान को तमाम चीजों से जुदा कर देता है, और जाहिक ये भी इंसान को तमाम चीजों से जुदा कर देता है, लेकिन नातिक वो इंसान की हकीकत और माहियत में दाखिल है, और जाहिक वो इंसान की सिफत है, इंसान की हकीकत और माहियत में दाखिल नहीं है। भाई तो तारीफ हकीकी का बड़ा मकसद क्या होता है कि एक चीज की पूरी हकीकत का आपको पता चल जाए, या वो तमाम बाकी चीजों से मुमताज हो जाए, जुदा हो जाए। आप दूसरे को समझाना चाहते हैं, बतलाना चाहते हैं ताकि वो उस चीज को पूरे तौर पर समझ ले। तो तारीफ हकीकी के दो बड़े मकसद होते हैं कि वो क्या हो, उसकी हकीकत का पता चल जाए, या वो तमाम चीजों से जुदा हो जाए, मुमताज हो जाए, सुनने वाले को समझ में आ जाए। भाई तो ये दो बड़े मकसद हैं। तो अगर ये दोनों हासिल हो जाएं फिर तो सबसे बेहतर बात है, हकीकत का भी पता चल जाए और बाकी चीजों से भी जुदा हो जाए। लेकिन अगर हकीकत का पता ना चले तो कम से कम दूसरी चीजों से जुदा जरूर हो जाए। तो जो हद होती है उसके जरिए हकीकत का पता चलता है, और रसम जो है उसके जरिए सिफात का पता चलता है। तो जो तारीफ जातियात पर मुश्तमिल हो उसको कहते हैं हद भाई, यानी ऐसी चीजें उसमें जिक्र हो जो उस चीज की माहियत और हकीकत में दाखिल है, यानी उसमें फसल जिक्र हो। और वो तारीफ जो सिफात पर मुश्तमिल हो उसको रसम कहते हैं, यानी उसमें खासा जिक्र हो ताकि वो बाकी चीजों से क्या हो जाए, जुदा हो जाए। तो ये जो कलिमा की तारीफ की, इसके अंदर दो चीजें जिक्र हुई, एक तो ये कि कलिमा अपने माना पर खुद दलालत करेगा या दलालत नहीं करेगा, यह भी कलिमा की सिफत है, और इसी तरह वो उसके साथ तीन जमानों में से कोई जमाना मिला होगा या नहीं मिला होगा, ये भी उसकी सिफत है। तो ये तो तारीफ हुई सिफात के साथ, और सिफात पर जो तारीफ मुश्तमिल हो उसको क्या कहते हैं, रसम कहते हैं। तो मुसन्निफ को हद नहीं कहना चाहिए था, रसम कहना चाहिए था कि वकद उलिमा बिजालिका रस्म कुल्ली वाहिदिन मिन्हा। तो उसका जवाब दिया था मुल्ला जामी रहमहुल्ला ने कि यहां पर हद से मुराद वो मंतिकी हद मुराद नहीं है जो जातियात पर मुश्तमिल हो, बल्कि यहां हद से मुराद है जामे अमाने तारीफ पे। जामे अमाने तारीफ इल्मे नह के अंदर जामे माने तारीफ को हद कहते हैं। तो यहां पर जो इसम फेल और हर्फ की जो तारीफ समझ में आ रही है वजह हसर से, वो जामे अमाने तारीफ है। जामे है यानी तमाम, अपने तमाम अफराद का इहाता कर लेती है। फेल की तारीफ की उसमें तमाम दुनिया के फेल दाखिल हैं, इसम की तारीफ की उसमें तमाम दुनिया के इसम दाखिल हैं, और हर्फ की तारीफ की उसमें तमाम हर्फ दाखिल हैं। तो ये जामे भी है और माने भी है, यानी इसम की तारीफ में न फेल दाखिल होता है और ना हर्फ, और हर्फ की तारीफ में न इसम दाखिल होता है और ना फेल, और फेल की तारीफ में ना हर्फ दाखिल होता है और ना इसम। तो हर एक की तारीफ जामे भी है और माने भी है। और उसके बाद साहिब जामी ने साहिब काफिया की इबारत की तारीफ की, वलिल्लाहि दरुल मुसन्निफी, और अल्लाह ही के लिए है मुसन्निफ का कमाल और खूबी, यानी ताज्जुब का इजहार। मैंने बतलाया था ये अरब ताज्जुब के मौके पर यह जुमला इस्तेमाल करते हैं, किसी में कोई बड़ा कमाल या खूबी देखें तो कहते हैं वलिल्लाहि दरु फुलानिन, फला का कमाल अल्लाह ही के लिए है, यानी ये इतना बड़ा कमाल है ये अल्लाह ही ने इसको अता किया है, अल्लाह की अता के अलावा यह कमाल हो ही नहीं सकता। तो यहां पर भी मुसन्निफ बड़ी प्यारी इबारत लाए थे, क्योंकि तुलबा तीन किस्म के हो सकते हैं, कुछ जहीन तुलबा होते हैं, कुछ मुतवस्सित होते हैं, कुछ कमजोर तुलबा होते हैं, और मुसन्निफ साहिब काफिया जो है वो ऐसी इबारत लाए कि उन्होंने तमाम तुलबा की रियायत रखी। सबसे पहले वजह हसर लाए, वो वजह हसर ही ऐसी थी कि उसी से इसम फेल और हर्फ की तारीफ समझ में आ जाती थी, तो जहीन तालिब इलम के लिए वही काफी थी, लेकिन मुतवस्सित तालिब इलम की हो सकता है तवज्जो ना हो कि इसे इस तारीफ समझ में आ रही है, तो उसके लिए आगे फिर बाकायदा उस पर मुतनब्बेह भी कर दिया, वकद उलिमा बिजालिका, ये जो वजह हसर हमने जिक्र कर दी इसके जरिए जान लिया गया किस चीज को, हद कुल्ली वाहिदिन मिन्हा, इनमें से हर एक की हद को, जामे माने तारीफ को जान लिया गया। अब मुतवस्सित तालिबे इल्म की भी तवज्जो हो गई, वो भी गौर करेगा, वो भी समझ जाएगा कि वाकई ये जो वजह हसर थी इससे तीनों की तारीफ मालूम हो रही है। और फिर बाज़ तलबा कमजोर होते हैं, उनकी भी रियायत की, हो सकता है उनको अभी भी बात समझ में ना आई हो, तो फिर आगे बाकायदा आगे चलकर वो इसम की भी अलग तारीफ करेंगे, फेल की भी अलग तारीफ करेंगे और हर्फ की भी अलग तारीफ करेंगे। तो उन्होंने कमाल किया कि अपनी किताब पढ़ने वाले तमाम तलबा की रियायत की, जहीन की भी, मुतवस्सित की भी और कमजोर तलबा की भी। भाई बात समझ में आ गई। अच्छा भाई, अब आइए आज के सबक पर। देखिए किताब पर इबारत, अल कलामु फिल लुगति मा युतकल्लमु बिही कलीलन कान औ कसीरन व फिस्तिलाहिन नुहात मा तज़म्मन अय लफ्ज़ तज़म्मन कलिमतैन हकीकतन औ हुक्मा أن يكون كل واحدة منهما في ضمنه فالمتضمن اسم فاعل هو المجموع والمتضمن اسم مفعول كل واحدة من كلمتين فلا يلزم اتحادهما بالإسناد أي تضمنا حاصلا بسبب إسناد إحدى الكلمتين إلى الأخرى। अब कलाम की तारीफ करने लगे हैं भाई साहिब काफिया। पहले सिर्फ मतन मतन जरा देख लीजिए। अल कलामु मा तज़म्मना कलिमतैनी बिल इस्नादी, कलाम मा, मा से मुराद है लफ्स भाई। अल कलामु मा, कलाम वो लफ्स है, तज़म्मना कलिमतैनी जो मुतज़म्मिन हो दो कलिमों को, यानी उसके ज़िमन में, उसके बीच में, उसके अंदर दो कलिमे आ रहे हों। बिल इस्नादी किसके साथ? इस्नाद के साथ। यानी कलाम वो लफ्ज है जो मुश्तमिल हो दो कलिमों पर, और उन दो कलिमों में भी क्या होना चाहिए? इस्नाद होना चाहिए। बगैर इस्नाद के ना हो भाई, बगैर इस्नाद के होंगे तो वो कलाम नहीं कहलाएगा। तो कलाम किसको कहते हैं? जो कितने कलिमों पर मुश्तमिल हो? दो कलिमों पर मुश्तमिल हो, और उन दोनों में इस्नाद होना चाहिए, एक कलिमे का दूसरे कलिमे की तरफ इस्नाद होना चाहिए। तो कलाम, अल कलाम मा तज़म्मन कलिमतैन बिल इस्नादी, कलाम वो लफ्ज है जो मुतज़म्मिन हो दो कलिमों को इस्नाद के साथ, यानी उसके अंदर दो कलिमे हो, इस्नाद हो उन दोनों के दरमियान। माना समझ में आ गया? अब आइए शरा में भाई। कहते हैं अल कलाम फिल लुगति मा युतकल्लमु बिही कलीलन काना औ कसीरा। कलिमा की तारीफ के बाद अल्लामा इब्ने हाजिब कलाम की तारीफ फरमा रहे हैं, और आप पढ़ चुके हैं हिदायतुन नह वगैरह में कि इल्मे नह का मौजू कलिमा और कलाम दोनों हैं। भाई कलिमा भी इल्मे नह का मौजू है और कलाम भी इल्मे नह का मौजू है। भाई तो सवाल पैदा होता है कि कलिमा को मुकद्दम क्यों किया और कलाम को मुअख्खर क्यों किया, हालांकि नह का सबसे अहम मकसद क्या है? नह का इल्म, नह का सबसे अहम मकसद क्या है? कि आपको एराब का पता चले कि कहां पर रफा पढ़ना है, कहां नसब पढ़ना है और कहां जर पढ़ना है। और एराब का दारो मदार कलाम पर होता है, क्योंकि कलाम होगा तो उसमें कोई मुब्तदा बनेगा, कोई खबर बनेगा, कोई या इसी तरह फेल है तो फाइल आएगा, आगे मफरूल आएगा, तो इस पर कौन सा एराब पढ़ना है वो कलाम से पता चलता है। तो नह का सबसे अहम मकसद क्या? एराब का पता चलाना, और एराब का दारोमदार किस पर? कलाम पर। तो गोया कलाम अहम मकासिद में से हुआ, तो कलाम को मुकद्दम करना चाहिए था, लेकिन मुसन्निफ ने क्या किया? कलिमा को मुकद्दम किया। एतराज समझ में आया? तो जवाब यह कि मुसन्निफ ने कलिमा को इसलिए मुकद्दम किया क्योंकि कलिमा कलाम का जुज है। भाई अभी क्या तारीफ की? कलाम की। अल कलामु मा तज़म्मना कलिमतैन बिल इस्नादी, कि जिसमें दो कलिमे हो। भाई तो कलाम आपको समझ ही तब आएगा जब आपको कलिमे का तो पता हो। कलाम मुतज़म्मिन होता है दो कलिमों को। भाई आपको अगर कलिमे का ही नहीं पता तो आपको तारीफ समझ में नहीं आएगी। तो कलिमा क्या है? कलाम का जुज है, और जुज कुल पर मुकद्दम होता है। जुज समझ में आएगा आपको तो कुल भी समझ में आ जाएगा, जुज समझ में नहीं तो कुल समझ में नहीं आ सकता। तो कलिमा चूंकि जुज के दर्जे में था इसलिए उसको मुकद्दम किया, और कलाम कुल के दर्जे में था इसलिए उसको मुअख्खर किया। बात समझ में आ गई। अब एक और चीज समझ लें, एक है फसल एक है वसल। तो एक है फसल और एक है वसल। भाई फसल और वसल इल्म बलागत में आप पढ़ेंगे, मुख्तसरुल मानी में भी और इसी तरह इस साल आप दुरुसुल बलागा में है, दुरुसुल बलागा पढ़ रहे होंगे, उसके अंदर भी फसल और वसल का जिक्र आ जाएगा। फसल का माना है जुदा करना, लफ्ज से ही पता चल रहा है फसल किसको कहते हैं, जुदाई को, तो फसल का माना है जुदा करना, और वसल का माना है मिलाना, जोड़ना। याद रखो ये जो हुरूफ आतफ हैं ये वसल का काम देते हैं। मसलन मैंने कहा जा अनी जैदुन व अमरुन, देखा ये व के जरिए मैंने क्या किया, अमर का आतफ किया किस पर, जैद पर। तो जैसे आना जैद के लिए साबित है, इसी तरह पता चल गया कि आना अमर के लिए भी साबित है। बात समझ में आ गई। इसी तरह कभी हर्फ आतफ के जरिए एक कलाम का दूसरे कलाम पर, एक जुमले का दूसरे जुमले पर आतफ किया जाता है, जैदुन काइमुन व अमरुन जालिसुन, जैद खड़ा है और अमर बैठा है। तो जैदुन काइमुन एक जुमला और अमरुन जालिसुन दूसरा जुमला, दरमियान में व में ले आया मैंने, यानी इनको रबत दे दिया, जोड़ दिया आपस में। यह है वसल, क्या है वसल है, वसल का माना मिला देना, एक जुमले का दूसरे जुमले पर आतफ कर दिया, इनको जोड़ दिया, इनमें रबत दे दिया। और एक है फसल कि मैं दरमियान में हर्फ आतफ जिक्र नहीं करता, कोई भी हर्फ आतफ जिक्र कर दिया जाए। बात समझ में आ रही है। तो जैदुन काइमुन व अमरुन जालिसुन ये क्या है, वसल है, वसल है, तवज्जो है, हर्फ आतफ बीच में ले आए तो क्या किया, वसल किया, दोनों जुमलों को रबत दे दिया, दोनों को जोड़ दिया। और अगर हर्फ आतफ बीच में न लाएं तो इसको कहते हैं फसल। जैदुन काइमुन अमरुन जालिसुन, मैंने दरमियान में कोई हर्फ आतफ जिक्र नहीं किया, गोया मैंने इन दोनों जुमलों को एक दूसरे से जुदा कर दिया, अलग कर दिया। जैदुन काइमुन में अलग बात हो रही है और अमरुन जालिसुन में अलग बात हो रही है, दोनों का आपस में कोई रबत नहीं है। तो जब हर्फ आतफ बीच में लाएं इसको क्या कहते हैं, वसल, और हर्फ आतफ बीच में न लाएं तो इसको क्या कहते हैं, फसल कहते हैं, कि दोनों को जुदा कर दिया, अलग कर दिया, दोनों में कोई रबत नहीं, कोई ताल्लुक नहीं, एक में एक बात है दूसरे में दूसरी बात है, दोनों बातों में कोई रबत नहीं। जबकि पहली सूरत में जैदुन काइमुन व अमरुन जालिसुन उसमें दोनों में रबत था, जैद और अमर में भी रबत और कायमुन और जालिसुन में भी रबत, मालूम हुआ जैद और अमर उनमें भी कोई ताल्लुक होगा, दोनों दोस्त होंगे या भाई होंगे या कोई ना कोई ताल्लुक होगा। तो जब एक जुमले का दूसरे जुमले पर आतफ किया जाता है तो मुस्नद और मुस्नद इलैह दोनों में रबत होता है, और कभी रबत देना मकसूद ना हो तो फिर फसल किया जाता है, हर्फ आतफ बीच में नहीं लाते। तो यहां पर भी साहिब काफिया ने कहा अल कलाम मा तज़म्मन कलिमतैन बिल इस्नादी, कोई दरमियान में हर्फ आतफ वाओ या फा या सुम्मा वगैरह नहीं लाए, कहना तो यूं चाहिए था वल कलाम माता जम्मना, कलीमा की बात की और आगे वल कलाम, और कलाम जो है वो है जो मुतजम्मिन हो दो कलीमों को, तो हर्फ आतफ को जिक्र नहीं किया। तो इसकी क्या वजह है, साहिब काफिया ने हर्फ आतफ को क्यों जिक्र नहीं किया? तो जवाब यह कि अगर हर्फ आतफ जिक्र कर देते तो ये मातूफ बन जाता, और माकबल वाला मातूफुन अलै, तो ये मातूफ बन जाता और माकबल वाला मातूफुन अलै। याद रखो जो पहले आए उसको कहते हैं मातूफुन अलै, और जो बाद में आए उसको क्या कहते हैं मातूफ, और मातूफुन अलै असल होता है और मातूफ उसके ताबे होता है। जा अनी जैदुन व अमरुन, मातूफुन अलै कौन, जैद, और मातूफ कौन, आमर, तो ये आमर जैद के ताबिया है, जैद पर जो एराब आएगा वही एराब आमर यानी मातूफ पर भी आएगा, तो मातूफ क्या होता है, ताबिया। तो यहां अगर हर्फ आतफ ले आते तो शुबा होता कि शायद ये अल कलाम जो है ये कलीमा के ताबिया है, यानी इल्म नह का मौजू दोनों है, कलीमा भी और कलाम भी, लेकिन कलीमा असल है मौजू होने में और कलाम क्या है, ताबिया है, कलाम उसके। ये शुबा कब पड़ता, अगर दरमियान में क्या ले आते, हर्फ आतफ, तो इसलिए हर्फ आतफ नहीं लाए, ये बतलाने के लिए कि कलाम जो है इल्म नह का मौजू है लेकिन वो मौजू होने में कलीमा के ताबिया नहीं, कलीमा भी मुस्तकिल इल्म नह का मौजू और कलाम भी इल्म नह का मुस्तकिल मौजू है, दोनों असल हैं भाई इल्म नह का मौजू होने में। और मैंने आपको यह भी बतलाया था कि ये जो काफिया है ये माखूज है मुफस्सल से, मुफस्सल अल्लामा ज़मख़शरी की किताब है जो बहुत बड़े आलिम गुजरे हैं भाई, और मुफस्सल को मुफस्सल इसलिए कहते हैं कि इसमें फसलें बहुत ज्यादा हैं, वो हर चीज के लिए अलग फसल लेकर आते हैं, तो बहुत ज्यादा फसलें हैं, हत्ता के बाज फसलें तो एक एक सतर पर मुश्तमिल हैं। तो साहिब काफिया ने मुफस्सल से इस काफिया को अखज किया, लेकिन उनको ये इतनी कसरत से फसलों का जिक्र उनको इतना नापसंद आया कि उन्होंने अपनी पूरी काफिया में एक भी फसल जिक्र नहीं की। तो वो यहां काफिया में वो क्या करते हैं कि फसल के बजाय सिर्फ हर्फ आतफ वहां नहीं लाते भाई, तो यहां भी अल कलाम के लिए हर्फ आतफ नहीं लाए, तो गोया ये भी एक अलग फसल है। पहले फसल किसकी थी? कलिमा के बारे में, अब दूसरी फसल किसके बारे में है? कलाम के बारे में। और उसकी तरफ इशारा किसके जरिए किया कि दरमियान में हर्फ आतफ को जिक्र नहीं किया, इसी ने फसल पर दलालत कर दी कि ये अलग बात है भाई, अलग बहस है भाई। अब देखिए किताब पर कहते हैं अल कलाम फिल लुगती मा युतकल्लम बिही कलीलन कान औ कसीरा। जी कलाम की तारीफ मैंने आपको बयान कर दी, सिर्फ हमने मतन हल किया था। अल कलाम मा तजम्मन कलिमतैन बिल इस्नादी, कलाम वो लफ्ज है जो मुतजम्मिन हो दो कलिमों को, किसके साथ? इस्नाद के साथ, उन दो कलिमों में इस्नाद भी हो। यह कलाम की इस्तिलाही तारीफ है, इल्म नहव के अंदर कलाम इसको कहते हैं। तवज्जो है, इल्म नहव में कलाम किसे कहते हैं? मा तजम्मन कलिमतैन बिल इस्नाद, वो लफ्ज जो मुतजमिन हो दो कलिमों को इस्नाद के साथ, ये इल्मे नहव के अंदर कलाम को कहते हैं। और एक कलाम है अरबी जुबान में, अरबी जुबान में किसे कहते हैं? तो वो आपको बतला रहे हैं कि अल कलाम फिल लुगती, कि कलाम जो है लुगत में, कलाम उस लुगत में, कौन सी लुगत में? अरबी लुगत में। तवज्जो है, तो अरबी लुगत में कलाम जो है, इधर देखिए याद रखो, आपको बताएंगे कि अरबी लुगत में कलाम इसे कहते हैं जिस पर तकल्लुम किया जाए, आप जुबान से जो भी लफ्ज अदा कर दें यह कलाम है, चाहे एक लफ्ज अदा करें चाहे ज्यादा अदा करें, चाहे मुफरद अदा करें चाहे पूरा जुमला अदा करें, चाहे कलिमा अदा करें चाहे मोहम्मद लफ्ज कोई अदा कर दें, यह सब क्या है? कलाम है। तवज्जो है, कलिमा तो वो लफ्ज जिसका कोई माना हो, मोहम्मल वो लफ्ज जिसका कोई माना ना हो, तो आप जुबान से जो भी लफ्ज अदा करेंगे ये सब अरबी जुबान के एतबार से कलाम कहलाते हैं। तो अरबी जुबान में कलाम और है और नहव के अंदर कलाम और है। अरबी जुबान में जिस पर भी तकल्लुम कर लिया जाए, चाहे वो थोड़ा हो चाहे ज्यादा हो, चाहे उसका कोई माना हो या माना ना हो, सबको कलाम कहते हैं। तो कहते हैं अल कलाम फिल लुगती, कलाम जो है अरबी जुबान में, मायू तकल्लम बिही, वो है जिस पर तकल्लुम किया जाए, वो लफ्ज है जिस पर तकल्लुम किया जाए, कलीलन काना औ कसीरा, वो थोड़ा हो या ज्यादा, वफ इस्तिलाह नुहाती, और नहवियों की इस्तिलाह में कलाम जो है, मा तजम्मना ऐ लफ्जुन तजम्मना कलिमतैन बिल इस्नाद। यहां तक बात समझ में आ गई। अब नहवियों के नजदीक कलाम किसे कहते हैं वो बयान कर रहे हैं, मा तजम्माना ऐ लफ्जुन तजम्माना, लफ्जुन तजम्माना, इबारत पे नजर है, क्या बतलाना चाहते हैं शारह जामी, मा तजम्माना की तफसीर की उन्होंने, शरा की, ऐ लफ्जुन तजम्माना, मां की जगह लफ्जुन ले आए कि मां से क्या मुराद है? लफ्ज मुराद है भाई। याद रखो ये एक मां मौसूला होता है, एक मां मौसूफा। तवज्जो है, एक मां मौसूला होता है जो बमाने अल्लजी के होता है, और एक मां मौसूफा होता है जो बमाना शैउन के होता है, शैउन कोई चीज, कोई चीज। और ये जो मां मौसूला होता है वो इसमें मौसूल है, मारिफा है, अल्लजी के माना में है, और ये जो मां मौसूफा होता है ये शय उनके माना में होता है, कोई चीज। और मां मौसूला के लिए आगे सिला चाहिए, तो आगे जो जुमला आता है वो उसका सिला बनता है, तो मां मौसूला के लिए आगे जो जुमला आता है वो उसके लिए सिला बनता है, और मां मौसूफा नाम से ही पता चल रहा है आगे आने वाला जुमला उसके लिए सिफत बनता है। तो मां मौसूला है मारिफा, और मां मौसूफा है नकेरा भाई। और दोनों के लिए आगे एक जुमला आएगा। मां मौसूला के लिए वो जुमला क्या बनेगा? सिला। और मां मौसूफा के लिए वो जुमला क्या बनेगा? सिफत बनेगा। और सिले को मौसूल से जोड़ने के लिए रबत जरूरी, तो उसमें कोई जमीर होनी चाहिए जो किसकी तरफ लौटे? इसमें मौसूल की तरफ। और सिफत को भी, जब जुमला सिफत बने उसको भी मौसूफ से जोड़ने के लिए दरमियान में रबत जरूरी है, तो उसमें भी कोई जमीर होगी जो किसकी तरफ लौटे? जो मौसूफ की तरफ लौटे। भाई बात समझ में आ गई? तो अगर इस मां को मौसूला बनाए, तवज्जो है, अगर इस मां को मौसूला बनाए तो ये बमाने अल्लाजी के है, ये मारिफा है, और तजम्मना कलिमतैनि बिल इस्नादी, ये सारा जुमला इसका सिला बनेगा। और अगर इस मां को मौसूफा बनाए तो ये नकेरा है शैउन के माना में, और तजम्मना कलिमतैनि बिल इस्नादी, ये सारा जुमला इसकी सिफत है। भाई तो तरकीब दोनों में बिल्कुल एक जैसी होगी, सिर्फ फर्क यह होगा, एक सूरत में यह मां मौसूला हो तो क्या होगा? मारिफा, और मौसूफा हो तो नकेरा होगा। तो एक फर्क तो यह होगा कि मां मौसूला मारिफा होता है और मां मौसूफा नकेरा होता है। दूसरा फर्क दोनों में यह है कि मौसूल का जो सिला होता है उसका कोई महल्ले एराब नहीं, लिहाजा अगर इस मां को मौसूला बनाओ तो आगे जो जुमला है तजम्मना कलिमतैनि बिल इस्नाद, ये इसका सिला बना। अगर आपसे कोई पूछे इसका महल्ले एराब क्या है तो आप कहेंगे ला महल्ल लहु मिनल एराब, क्योंकि सिले का कोई महल्ले एराब नहीं होता, एराब के लिए कोई आमिल चाहिए, इसके अंदर कोई चीज आमिल नहीं है भाई। और अगर इस मां को मौसूफा बनाओ तो फिर याद रखो मौसूफ पर जो एराब आता है वही एराब किस पर आता है? सिफत पर भी। और ये मां मौसूफा खबर है, मरफू है, तो तजम्मना कलिमतैनि बिल इस्नादी, ये पूरा जुमला भी क्या होगा? मरफू होगा, सिफत होगा मां मौसूफा की। फर्क समझ में आ गया? साहिब जामी ने मा तजम्मना ऐ लफ्जुन तजम्मना, लफ्जुन नकेरा निकालकर बतला दिया कि ये मां मौसूला न बनाओ, इसको क्या बनाओ? मां मौसूफा बनाओ। इसलिए इसकी तफसीर किसके साथ की? लफ्जुन नकेरा के साथ की। अगर ये मां मौसूला होता तो वो तो मारिफा होता है, अल्लजी के माना में होता है, और उसका जब मिस्दाक या जो उसकी मुराद जिक्र की जाती है वो फिर मारिफा जिक्र की जाती है, फिर अल लफ्जु कहना चाहिए था। अयिल लफ्जो तजम्मना कहते तो फिर हम समझते कि ये कौन सा मां है? मां मौसूला है। लेकिन साहिब जामी ने नकेरा निकाला, लफ्जुन निकालकर इस मां का मिस्दाक बता दिया। मैंने बताया था मां मौसूफा जो है वो किस माना में होता है? शैउन। शैउन हर चीज पर सादिक आता है, कोई भी चीज हो वो क्या है? शै है। किताब शै है, कलम शै है, जैद शय है, अमर शय है। तो शय याद रखो अन करुन नकिरात है, तमाम नकिरों में सबसे ज्यादा तनकीर किसके अंदर है? शय उनके अंदर, वो हर चीज पर बोला जाता है। तो लेकिन साहिब जामीन ने मां की तफसीर शय उनके साथ नहीं की, लफ्जुन के साथ की। तो ये दरअसल मां मौसूफा का मिसदाक बता रहे हैं, जिस पर यह सादिक आ रहा है, जो इससे मुराद है वो बतला रहे हैं, जो इससे यहां मां से दुनिया की हर चीज मुराद नहीं है बल्कि लफ्ज मुराद है, बल्कि लफ्ज मुराद है। बात समझ में आ गई? वरना तो एक कागज है, उस कागज पर आप दो कलिमे लिख दें तो यह भी शय है जो मुतजमीन है किसको? दो कलिमों को। इस कागज को भी क्या कहना पड़ेगा? कलाम कहना पड़ेगा, हालांकि कोई भी इसको कलाम नहीं कहता। तो बतलाया कि मां से हर चीज नहीं मुराद बल्कि मां से क्या मुराद है? लफ्ज मुराद है, उसका मिसदाक लफ्ज है यहां पर। तो अल कलाम लफ्जुन तजम्मना, कलाम वो लफ्ज है जो मुतजमिन हो दो कलिमों को, और लफ्ज मस्दर है। लफ्ज क्या है? मस्दर है, इसमें जिंस है, और इसमें जिंस का इतलाक कलील और कसीर सब पर होता है। एक लफ्ज हो उसको भी कहेंगे लफ्ज, दो हो तब भी कहेंगे लफ्ज, हजार हो फिर भी क्या कहेंगे? लफ्ज। तो लफ्ज इसमें जिंस है, इसमें जिंस का इतलाक कलील और कसीर सब पर होता है। एक है जमा, एक है इसमें जिंस। मैं पहले बयान कर चुका हूं, जमा के अंदर सीगा बदलता है, सूरत बदलती है उसकी, सीगा बदलता है। एक किताब हो तो आप कहते हैं किताब, ज्यादा हो तो आप कहते हैं कुतुब, या उर्दू में कहते हैं किताबें। देखा, लफ्ज ही बदल दिया। लेकिन इसमें जिंस वो कलील और कसीर सब पर बोला जाता है। एक इंसान हो फिर भी कहते हैं ये इंसान है, हजार इंसान हो फिर भी क्या कहते हैं? ये इंसान हैं। देखा वही लफ्ज इंसान एक पर भी बोला जा रहा है, वही लफ्ज हजार इंसानों पर भी बोला जा रहा है, लेकिन किताब का लफ्ज आप बदलते थे। एक किताब होती थी तो आप क्या कहते हैं, ये किताब, और ज्यादा हो तो फिर आप किताब नहीं कहते, अब आप कहते हैं ये कुतुब हैं, या ये उर्दू में कहते हैं ये किताबें हैं। देखें जमा का लफ्ज अलग ले आए, तो एक है जमा, जमा का इतलाक कम से कम तीन या इससे ज्यादा पर होता है, जबकि इसमें जिंस जो है उसका इतलाक कलील और कसीर सब पर होता है। एक फर्द हो उसके लिए भी वही लफ्ज, हजार अफराद हों उसके लिए भी वही लफ्ज इस्तेमाल होता है। तो यहां लफ्ज आया तो आप ये ना सोचें कि लफ्ज तो एक होता है, नहीं भाई, एक हो तो भी लफ्ज, ज्यादा हो तो भी उसको लफ्ज ही कहेंगे। तो कहते हैं अल कलाम मा तजम्मना ऐ लफ्जुन तजम्मना कलिमतैनी, कलाम वो लफ्ज है जो मुतजम्मिन हो दो कलिमों को, बिल इसनादी, किसके साथ, इसनाद के साथ। अच्छा यहां तक बात समझ में आ गई, जरा किताब की इबारत पर नजर रखें। अल कलाम मा तजम्मना कलिमतैनी बिल इसनाद, अल कलाम है मुबतदा और मातजम्माना यह है इसकी खबर, ये मां चाहे मौसूला हो या मौसूफा हो, यह क्या बनेगा, इसकी खबर बनेगा। अल कलाम है मुब्तदा और मां यह क्या है, उसकी खबर है, और आगे तजम्माना कलिमतैन बिल इस्नाद, ये अगर मां मौसूला बनाया है तो उसका सिला बनेगा, और अगर मां मौसूफा बनाया है तो उसकी सिफत बनेगा। तो शारह जामी ने आपको बतला दिया कि मातजम्माना ये मां कौन सा है, ये मां मौसूफा है, आई लफ्जुन तजम्माना के जरिए बतला दिया, और उसका मिस्ताक भी बतला दिया कि मां से दुनिया की हर चीज नहीं मुराद, बल्कि क्या मुराद है यहां पर, लफ्ज मुराद है, लफ्ज जो उसका मिस्ताक है वो यहां सिर्फ लफ्ज है, यानी जिस पर वो सादिक आ रहा है। बाज उलमा इस मकाम की तकरीर ये करते हैं उर्दू शुरुहात वगैरह में कि शारह जामी यहां एक एतराज का जवाब देना चाहते हैं, तवज्जो है, यह बाज उलमा की तकरीर में जिक्र कर रहा हूं। वो फरमाते हैं कि शारह जामी ने मा तजम्मना का माना ऐ लफ्जुन तजम्मना बताकर यह एक एतराज का जवाब देना चाहते हैं। एतराज यह होता है कि अल कलामु है मुब्तदा और मा तजम्मना यह क्या है, उसकी खबर, और यह मा मौसूला है, तवज्जो है, तो यह मा मौसूला है, और मा मौसूला क्या होता है, मारिफा, तो मुब्तदा भी मारिफा और खबर भी मारिफा, मुब्तदा और खबर दोनों मारिफा हो गए, और जब मुब्तदा और खबर दोनों मारिफा हों तो दरमियान में एक जमीर जैसी सीगा लाते हैं जिसको फसल कहते हैं या जमीर फसल कहते हैं, बास के नजदीक वो जमीर है, बास के नजदीक जमीर नहीं है भाई, वैसे सिर्फ फसल के लिए जमीर जैसी सूरत होती है। मसलन मैं आपसे कहना चाहता हूं जैदुन कायमुन, जैद खड़ा है, तो जैदुन है मुब्तदा और कायमुन है उसकी खबर, जैद है मारिफा और कायमुन है नकेरा। याद रखो मुब्तदा में असल है वो मारिफा होना चाहिए और खबर में असल क्या है, वो नकेरा होनी चाहिए। तो मुब्तदा को मारिफा लाते हैं और खबर को नकेरा, लेकिन कभी कभार खबर को भी मारिफा ले आते हैं और मकसद होता है कि वहां हसर आ जाए, क्या आ जाए, हसर। जैदुन कायमुन का क्या माना, जैद खड़ा है, अब मैं कायम नकेरा लाने के बजाय मारिफा ले आता हूं, अल कायम, क्या ले आता हूं, अल कायम, और यूं कहता हूं जैदुनिल कायमु, तो मुब्तदा तो था ही मारिफा, खबर भी मारिफा हो गई, अब तर्जमा होगा जैद ही खड़ा है, जैद ही खड़ा है। जैदुन कायमुन का क्या तर्जमा था, जैद खड़ा है, लेकिन मैं हसर पैदा करना चाहता हूं जैदुनिल कायमु, जैद ही खड़ा है, खबर भी मारिफा हो तो यह हसर का फायदा देती है। मसलन सुनने वाले का ख्याल यह था कि जैद और अमर दोनों खड़े हैं, मैंने उसको कहा जैदुनिल कायमु, जैद ही खड़ा है, मालूम हुआ अमर खड़ा हुआ नहीं है, तो यह हसर का फायदा देता है। तो वो बाद शारहीन की मैं तकरीर बयान कर रहा था कि वो फरमाते हैं कि अल कलाम मा तजम्मना के अंदर अल कलाम मुब्तदा है वो भी मारिफा, और मा तजम्मना मा मौसूला बनाए इसको तो ये भी क्या बनेगा, मारिफा, और मुब्तदा और खबर दोनों मारिफा हो तो दरमियान में जमीर फसल का लाना जरूरी है, किसका लाना, जमीर फसल, यानी जमीर जैसा एक सीगा बीच में ले आते हैं, बास के नजदीक वो जमीर है, बास के नजदीक वो जमीर है ही नहीं बल्कि हर्फ है, सिर्फ फसल करने के लिए लाते हैं ताकि फर्क हो जाए मुब्तदा और खबर और मौसूफ सिफत के दरमियान। मसलन मैंने कहा जैदुनिल कायमु, जैद ही खड़ा है, ये पूरा जुमला है, लेकिन सुनने वाले के जहन में आ सकता है कि मारिफा के बाद मारिफा आ रहा है, जैदुन भी मारिफा, अलकायम भी मारिफा, तो ये शायद आपस में मौसूफ सिफत है। जैद है मौसूफ और अलकायम है सिफत। तवज्जो है, मैं तो क्या बनाना चाहता हूं, जैद को मुब्तदा और अलकायम को उसकी खबर जिसमें बात पूरी है। क्या तर्जमा होगा, जैदुन अलकायम, जैद ही खड़ा है। और अगर इनको मौसूफ सिफत बना दें फिर क्या तर्जमा होगा, वो जैद जो खड़ा है, वो जैद जो कायम है। देखो बात अधूरी है, आप किसी को कहते रहे वो जैद जो कायम है, वो कहेगा उसको क्या हुआ, आप बात तो पूरी करें। तो लिहाजा मैं इनको क्या बनाना चाहता हूं, जैदुन अलकायमों को मुब्तदा खबर, लेकिन सुनने वाला क्या समझेगा, शायद ये आपस में क्या है, मौसूफ सिफत, क्योंकि मौसूफ मारिफा हो तो सिफत भी क्या लाते हैं, मारिफा, मौसूफ नकिरा हो तो सिफत भी क्या लाते हैं, नकिरा लाते हैं। तो सुनने वाला ख्याल कर सकता है कि शायद ये आपस में मुब्तदा खबर नहीं है बल्कि मौसूफ सिफत है, तो इसलिए दरमियान में फिर एक सीगा ले आते हैं जमीर की सूरत का जो मुब्तदा के मुताबिक होता है। मुब्तदा मुफरत हो तो यह भी मुफरत लाते हैं, वो तस्निया हो तो यह भी तस्निया लाते हैं, वो जमा हो तो यह भी जमा लाते हैं, वो मुजक्कर हो तो यह मुजक्कर लाते हैं, वो मुअन्नस हो तो यह मुअन्नस। तो जैदुनिल कायम, जैद क्या है, मुफरद है और मुजक्कर, तो दरमियान में इस जमीर जैसा एक सीगा ले आए जैसे हुआ जैदुन हुवल काइमु, तवज्जो है, जैदुन हुवल काइमु, तो ये जो हुआ है ये है फसल। बाज इसको कहते हैं ये जमीर है और बाज कहते हैं ये जमीर नहीं है बल्कि ये हर्फ है, तवज्जो है, इसका नाम फसल है। तो बाज इसको जमीर फसल कहते हैं, बाज इसको फसल कहते हैं। और इसने आकर मौसूफ सिफत को जुदा कर दिया। जैदुनिल कायमु क्या शुबा हो रहा था, मौसूफ सिफत, अब बीच में हुआ आ गई, अब मौसूफ सिफत का शुबा खत्म हो गया, अब पता चल रहा है जैदुन है मुब्तदा और अलकायम है उसकी खबर, बात समझ में आ गई, अब मौसूफ सिफत का शुबा नहीं हो सकता क्योंकि मौसूफ सिफत में फसल नहीं होता, दरमियान में जमीर वगैरह नहीं लेकर आते। तो इस हुआ ने क्या कर दिया, फसल कर दिया, किस चीज में इसने फसल कर दिया, जुदा कर दिया, किस से, मौसूफ सिफत से इस मुब्तदा खबर को जुदा कर दिया। पहले मौसूफ सिफत का शुबा था, अब मौसूफ सिफत का शुबा नहीं है, इसलिए इसको फसल कहते हैं। बात समझ में आ रही है। तो तकरीर चल रही थी बाद शारहीन की, वो फरमाते हैं कि अलकलाम उमा तजमना, अगर इस मां को मौसूला बनाएं तो फिर यह भी मारिफा, अलकलाम भी मारिफा और मा तजमना के अंदर जो मां है यह भी मारिफा, और जब मुब्तदा के साथ साथ खबर भी मारिफा आ जाए तो दरमियान में फसल का लाना वाजिब है, दरमियान में फसल का लाना वाजिब है, वरना अगर फसल नहीं लाओगे तो क्या शुबा होगा, यह शायद आपस में मौसूफ सिफत है। तो लिहाजा एतराज होता था कि ए साहिब काफिया आपने फसल को बीच में जिक्र नहीं किया, तो शारह जामी ने आपको जवाब दे दिया, ऐ लफ्जुन तजमना, कि यह मां मौसूला नहीं है बल्कि यह मां मौसूफा है। अगर मुब्तदा खबर दोनों मारिफा हो फिर फसल लेकर आते हैं, लेकिन यह मां तो मारिफा है ही नहीं, यह तो मां मौसूफा है, यह तो नकिरा है, लिहाजा अब फसल लाने की कोई हाजत नहीं। बात समझ में आ रही, बात शारहीन क्या फरमाते हैं फिर समझ लो अच्छी तरह तकरीर को, वो क्या फरमाते हैं, अगर इस मां को मौसूला बनाए तो फिर साहिब काफिया पे क्या एतराज होता है, उनको दरमियान में क्या लाना चाहिए था, फसल को लाना चाहिए था, लेकिन उन्होंने फसल को बीच में जिक्र नहीं किया। तो शारह जामी आई लफ्ज उन तजमना के जरिए क्या बतलाना चाहते हैं कि यह मां मौसूला नहीं है बल्कि यह मां मौसूफा है, यह नकेरा है, जब नकेरा है तो दरमियान में फसल लाने की कोई जरूरत नहीं है। बात समझ में आ गए। तो वो शारहीन कहते हैं कि जब भी मुब्तदा के साथ साथ खबर भी मारिफा आ जाए, मुब्तदा तो होता ही मारिफा है, खबर भी मारिफा आ जाए तो फसल का लाना वाजिब है, फसल का लाना वाजिब है। और यहां साहिब काफिया फसल नहीं लाए तो एतराज होता था, तो साहिब जामी ने जवाब दे दिया कि मां मौसूला नहीं है बल्कि मां मौसूफा है। तकरीर समझ में आई, लेकिन उनकी यह तकरीर दुरुस्त नहीं है भाई, उनकी यह तकरीर मुब्तदा और खबर जब दोनों मारिफा हो तो फसल का लाना वाजिब नहीं है, ला सकते हैं लेकिन लाना वाजिब नहीं। जैदुन हुवल काइमु यूं भी कह सकते हैं, और जैदुनिल काइमु बगैर फसल के भी आप कह सकते हैं, और यह फिर उमूमन हसर का फायदा देता है। زیدن القائم زید ہی کھڑا ہے یا زیدن هو القائم اس کا بھی وہی ترجمہ زید ہی کھڑا ہے توجہ ہے تو ان کی یہ بات درست نہیں ہے مبتدا اور خبر دونوں معرفہ ہو تو درمیان میں فصل کا لانا واجب نہیں ہے بھائی لا سکتے ہیں لیکن لانا واجب نہیں ہے حالانکہ اردو کی جتنی شروحات آپ اٹھا لیں سب نے یہی لکھا ہوتا ہے کہ جب مبتدا اور خبر دونوں معرفہ ہوں تو فصل کا لانا واجب ہے لیکن یہ بات درست نہیں کلام عرب میں تلاش کریں آپ کو بہت مثالیں مل جائیں گی ایک آسان مثال میں دیتا ہوں بھائی آسان زاد الطالبین آپ پڑھ کر آئے ہیں زاد الطالبین کے اندر حدیث آپ نے پڑھی ہوگی الدین النصیحت الدین النصیحت الدین ہے مبتدا النصیحت کیا ہے خبر ہے دونوں معرفہ ہیں اور درمیان میں کوئی فصل ہے نہیں اور یہ میں نے بتایا یہ حصر کا فائدہ دیتا ہے کس کا الدین النصیحت الدین سے خاص دین مراد کون سا دین دین اسلام الف لام کے ذریعے اشارہ ہو رہا ہے دین کی طرف خاص دین الدین النصیحت یہ جو دین ہے یعنی دین اسلام جو ہے النصیحت یہ خیر خواہی ہی ہے حسر ہے نا یا یوں کہو یہ دین اسلام صرف خیر خواہی ہے یعنی صرف خیر خواہی کا نام ہے یا یوں کہو الدین النصیحت دین خیر خواہی ہی ہے یعنی ہر ایک کی خیر چاہنا ہر ایک کے ساتھ خیر والا معاملہ رکھنا یہ ہے دین سمجھ میں آیا یعنی مسلمان ایسا ہے وہ کسی کو کبھی تکلیف نہیں دیتا ہر ایک کو فائدہ ہی فائدہ پہنچاتا ہے ہر ایک کی خیر ہی خیر چاہتا ہے مسلمان اسی کو کہتے ہیں الدین النصیحت دین خیر خواہی ہی ہے ہر ایک کے لیے خیر چاہنا آپ کے پاس کوئی مشورہ لینے آیا اس کو بہترین مشورہ دینا چاہے آپ کا نقصان ہی کیوں نہ ہو لیکن اس کو بہترین مشورہ دینا اس کے لیے خیر خواہی کرنا کوئی معاملہ کرتے ہیں آپ کوئی ذمہ داری آپ کے سپرد کی جاتی ہے آپ کسی دفتر میں کام کرتے ہیں کہیں پر کرتے ہیں کام آپ بہترین کوشش کرنا لوگوں کے ساتھ اچھے سے اچھا رویہ رکھنا سمجھ میں آیا تو یہ دین سراسر خیر خواہی ہی ہے دیکھو اسی طریقے پر مسلمان جب تک کار بند تھے پوری دنیا پر وہ چھا گئے بھائی جو وہ مسلمان کام کرتے تھے اپنی پوری کوشش کرتے تھے کہ بہترین انداز میں کریں لوگوں کے زیادہ سے زیادہ ہم کام آئیں بھائی اور آج جب مسلمانوں نے اس راستے کو چھوڑ دیا ہے تو کفار ہم پر غالب آ گئے اگرچہ ابھی بھی بہت سے لوگ لگے ہوئے ہیں اللہ ان کو جزائے خیر دے وہ اسلام کے اسی راستے پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں اور ان کی وجہ سے یہ نظام چل رہا ہے بھائی سمجھ میں آیا تو بات سمجھ میں آ گئی کہ جب خبر معرفہ ہو تو فصل کا لانا واجب نہیں ہے اور میں نے دلیل کیا ذکر کر دی حدیث ذکر کر دی حضور علیہ السلام کیا فرماتے ہیں الدین النصیحت خبر معرفہ ہے لیکن یہاں فصل نہیں اسی طرح ہدایہ کے اندر آپ پڑھیں گے باب اوقات الصلات کے اندر جس میں نماز کے اوقات بیان ہوتے ہیں وہاں وہ حدیث ذکر کرتے ہیں الشفق الحمرت الشفق الحم الشفق ہے مبتدا الحمرہ ہے خبر اور یہ بھی معرفہ ہے اور درمیان میں کوئی فصل نہیں شفق جو آسمان کے کنارے پر شام کے وقت سرخی دکھائی دیتی ہے تو اس شفق اس سرخی کا نام ہے یا اس سرخی کے بعد کچھ دیر پھر سفیدی رہتی ہے اس سفیدی کا نام ہے تو فقہا کا اس میں اختلاف ہے بعض فقہا فرماتے ہیں کہ یہ سرخی کا نام شفق ہے اور وہ یہ حدیث ذکر کرتے ہیں اشفق الحمرت شفق کیا ہے سرخی ہی ہے اور یہ سرخی کوئی 10-15 منٹ رہتی ہے اور اس کے بعد پھر سفیدی آ جاتی ہے وہ کوئی گھنٹہ سوا گھنٹے تک رہتی ہے تو بعض فقہا فرماتے ہیں کہ اس سرخی کے بعد جو سفیدی آئے وہ شفق ہے بھائی وہ کیا ہے شفق تو ان کے نزدیک مغرب کا وقت 1 گھنٹے سے 1.5 گھنٹے تک ہے اس دوران آپ جب بھی مغرب پڑھیں گے وہ ادا ہی ہوگی قضا نہیں ہوگی اور یہی مذہب ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا اور اسی پر فتویٰ ہے بھائی تو دیکھا معلوم ہوا کہ جب خبر بھی معرفہ ہو تو فصل کا لانا ضروری نہیں ہے میں نے مثال میں 2 حدیثیں ذکر کر دیں اور بھی آپ تلاش کریں گے آپ کو بہت سی مثالیں مل جائیں گی لیکن اردو شروحات والے لکھتے ہیں کہ فصل کا لانا واجب ہے یہ درست نہیں ہے بھائی سوال پھر صاحب جامی نے ما تزمنا میں ما کو موصوفہ کیوں بنایا موصولہ کیوں نہیں بنایا تو یاد رکھنا بھائی آپ اس ما کو موصولہ بھی بنا سکتے ہو اور मौसूफा भी बना सकते हो। दोनों तरकीबें यहां पर ठीक हैं। अलबत्ता साहिब जामीन ने इस मां को मौसूफा बनाया, इसको तरजीह दी। वजह यह कि अभी मैंने आपको बतलाया कि मुब्तदा में असल क्या है, मारिफा होना चाहिए, और खबर में असल क्या है, नकेरा होनी चाहिए। तो इस मां को मौसूफा बनाएं तो खबर की असल पर हम रहेंगे, खबर की असल की रियायत हो जाएगी। इस सूरत में यह नकेरा होगा और खबर में भी असल क्या है, नकेरा होनी चाहिए। देखिए भाई किताब पर मा तज़म्मना ऐ लफ्ज़ुन तज़म्मना कलिमतैनी, वो लफ्ज़ है जो मुतज़म्मिन हो दो कलिमों को, हकीकतन औ हुक्मन, वो कलिमे हकीकतन हो या हुक्मन, वो दोनों कलिमे चाहे हकीकतन हो या हुक्मन हो। भाई साहिब जामी बतला रहे हैं कि कलिमा होना आम है, चाहे वो हकीकतन हो या हुक्मन हो। एक है हकीकतन कलिमा, जैसे जैद, अमर, बकर, किताब, कलम, कायम, ये सब क्या है, हकीकतन कलिमे। और कभी कलिमा हकीकतन नहीं होता लेकिन उसको हुक्म दे दिया जाता है कलिमे वाला। तवज्जो है, हुक्म किसका दे दिया जाता है, कलिमे वाला। उसकी तफसील आगे आ जाएगी, वहां मैं मौके पर बयान करूंगा। बस इतना याद रखें, हकीकतन और हुक्मन की इबारत लाकर शारह जामी ये बतलाना चाहते हैं कि कलिमा होना आम है, चाहे हकीकतन कलिमा हो चाहे हुक्मन कलिमा हो। और हुक्मन कलिमा क्या होता है, आगे तफसील आ जाएगी। अयकूनु कुल्लु वाहिदतिम मिन्हुमा फी ज़िम्निही, ये दरअसल एक एतराज का जवाब दे रहे हैं। एतराज यह होता है कि आपने जो कलाम की तारीफ की, यह तारीफ बातिल है, दुरुस्त नहीं, क्योंकि आपकी तारीफ से मुतज़म्मिन और मुतज़म्मन, मुतज़म्मिन इसमें फाइल और मुतज़म्मन इसमें मफूल, इन दोनों का इत्तेहाद लाजिम आता है। हालांकि मुतज़म्मिन और होता है, मुतज़म्मन और, दोनों में मुगायरत होती है। जैसे एक है कुल और एक है जुज, कुल और होता है और जुज और होता है, कुल जुज नहीं और जुज कुल नहीं है। तो आपकी तारीफ से मुतज़म्मिन और मुतज़म्मन का इत्तेहाद लाजिम आया, लिहाजा आपकी तारीफ बातिल है। किस तरह, जरा तारीफ पे नजर रखो, मतन मतन पर। अल कलामु मा तज़म्मन कलिमतैन बिल इस्नादी, कलाम वो लफ्ज है जो मुतज़म्मिन हो दो कलिमों को, किसको,
दो कलिमों।
मालूम हुआ कलाम हुआ मुतज़म्मिन, उसके ज़िमन में आएंगे, उसके बीच में आएंगे, क्या आएंगे, दो कलिमे। तवज्जो है, दो कलिमे उसके बीच में आएंगे, तो कलाम क्या हुआ, मुतज़म्मिन, इसमें फाइल है, तवज्जो है। और जो बीच में आए वो क्या है, मुतज़म्मन। मालूम हुआ ये जो कलिमतैन है ये है मुतज़म्मन, और कलाम क्या है, मुतज़म्मिन, तवज्जो है। लेकिन यही दो कलिमे तो कलाम भी हैं, यही कलिमतैन क्या हैं, कलाम भी यही है ना, कि कलाम कोई और चीज है, वही दो कलीमे उन्हीं को कलाम कहते हैं। तो यही कलीमतैन मुतज़म्मन थे लेकिन यही कलीमे कलाम भी हैं। नहीं समझ में आई बात, फिर देखो, फिर इबारत पे नजर रखो। अल कलामु मा तज़म्मन कलीमतैनी, कलाम वो लफ्ज है जो मुतज़म्मिन हो दो कलीमों को, तो कलाम हुआ मुतज़म्मिन, इसमें फाइल। और कलीमे जो उसके बीच में आए वो क्या है, मुतज़म्मन, यह है इसमें मफ़ूल। लेकिन ये दो कलिमे यही क्या कहलाते हैं, कलाम भी यही कहलाते हैं, और कलाम क्या है, मुतज़म्मिन। तो यही दो कलिमे मुतज़म्मन भी हुए, मुतज़म्मिन भी हुए। इश्काल समझ में आया, कलाम क्या था, फिर इधर देखिए, कलाम क्या था, मुतज़म्मिन, कलिमतैन ये क्या है, मुतज़म्मन। ये कलिमतैन पे नजर रखें, ये क्या है, ये मुतज़म्मन है। लेकिन यही दो कलिमे जिनमें इस्नाद है वही क्या कहला रहे हैं, कलाम भी वही कहला रहे हैं। तो ये कलिमतैन ये पहले क्या था, मुतज़म्मन, लेकिन यही कलाम भी है, यही क्या है, कलाम। और कलाम तो क्या कहलाता है, मुतज़म्मिन। तो ये मुतज़म्मन भी हुए और मुतज़म्मिन भी हुए। बात अभी तक नहीं समझ में आई जी, अपने सामने जरा एक मिसाल लिखो, ज़ैदुन क़ाइमुन, ज़ैदुन क़ाइमुन, देखो ये कलाम है, ज़ैदुन क़ाइमुन क्या तर्जमा, जैद खड़ा है, ये कलाम है, इसमें बात पूरी है। जैदुन है मुब्तदा और कायमुन है उसकी खबर, तो ये कलाम है। और कलाम की क्या तारीफ की, जो मुतज़म्मिन हो, किसको, दो कलिमों को। तो इस कलाम के अंदर ये दो क्या आ गए, कलिमे आ गए, तो कलाम क्या हुआ, متضمن اور دو کلمے کیا ہوئے متضمن, لیکن یہی دو کلموں کو دیکھیں یہ کیا ہے کلام بھی ہے تو یہ متضمن بھی ہوئے. یہ دو کلمے متضمن بھی ہیں اور یہی دو کلمے متضمن بھی ہو گئے. بات سمجھ میں آ گئی. یہ یوں کہیں ایک ہے کل اور ایک ہے جز, یہی دو کلمے کلام کا جز ہیں کلام کا اور یہی دو کلمے کلام بھی ہیں. تو جو کل ہے وہی کیا بن گیا جز, اور جو جز ہے وہی کیا بن گیا. بات سمجھ آ رہی ہے کس طرح کلام مرکب ہوتا ہے کس سے دو کلموں سے. تو کلام ہوا کل اور یہ دو کلمے ہوئے اس کے جز, لیکن یہی دو کلمے کیا ہیں کلام بھی ہیں تو یہ کل بھی ہیں. یہی دو کلمے جز بھی ہیں اور یہی کل بھی ہیں تو جو جز ہے وہ کل ہوا, جو کل ہے وہ جز ہوا. یا یوں کہیں کہ کلام ہوا متضمن اور یہ دو کلمے کیا ہوئے متضمن, لیکن یہی دو کلمے کیا کہلاتے ہیں یہی دو کلمے کلام بھی کہلاتے ہیں. یہی دو کلمے تو یہ کلمے تو تھے متضمن اور یہی کیا کہلاتے ہیں کلام بھی, اور کلام تو کیا ہوتا ہے متضمن, تو یہ کلمے متضمن بھی ہوئے. یہ متضمن بھی تھے متضمن بھی ہوئے تو کیا ہوا اتحاد لازم آیا متضمن اور متضمن کا. حالانکہ متضمن اور ہوتا ہے اور متضمن اور, ایک چیز دوسری چیز کے بیچ میں آئے, جو بیچ میں آئے وہ ہے متضمن اور جس کے بیچ میں آئے وہ کیا ہوتا ہے متضمن. تو کلام ہے متضمن اور دو کلمے ہیں متضمن, لیکن وہی دو کلمے کلام بھی ہیں تو وہ متضمن بھی ہوئے. پہلے تھے متضمن اب کیا ہو گئے متضمن, تو متضمن اور متضمن کا اتحاد لازم آیا, ایک ہی چیز بن گئے. حالانکہ دونوں الگ الگ ہوتے ہیں, کل اور ہوتا ہے جز اور ہوتا ہے, لیکن آپ کی تعریف سے دونوں میں اتحاد لازم آیا لہذا آپ کی تعریف باطل ہے. بات سمجھ میں آ گئی. تو اس کا جواب دیں گے کہ نہیں بھائی دونوں میں متضمن اور متضمن میں اتحاد لازم نہیں آتا. یوں کہو یہاں کل اور جز میں اتحاد نہیں لازم آتا, کل اس کو تب کہیں گے جب دونوں کی اجتماعی صورت ہو. دونوں کی اجتماعی صورت کے اعتبار سے یہ ہے کل, اور دونوں کی انفرادی حیثیت سے یہ ہے جز. زید قائم یہ سارا کیا ہے اجتماعی صورت کو لیں تو یہ کیا ہے کلام, یہ ہے کل, یہ ہے متضمن. اور اگر ان میں سے ہر ایک کو الگ الگ لیں تو یہ کیا ہے متضمن. تو زید قائم زید یہ انفرادی حیثیت سے, قائم سے الگ, قائم سے الگ زید کیا ہے یہ بھی کلام کا جز, اور قائم الگ اکیلا یہ بھی کیا ہے کلام کا جز. تو دونوں الگ الگ وہ ہیں متضمن, اور دونوں مل جائیں تو دونوں سے بنے گا کلام اور وہ کیا بنے گا متضمن. تو یہ دونوں متضمن ہیں اجتماعی حالت میں, جب دونوں مل جائیں جڑ جائیں اور دونوں کیا ہیں متضمن ہیں انفرادی حیثیت سے, یعنی ان میں سے ہر ایک. تو گویا کل کیا ہے زیدن قائمن, اور جز کیا ہے ایک جز ہے زیدن اکیلا زید, جز کیا ہے زیدن اور ایک جز کیا ہے قائمن ہے. تو جز ہے انفرادی حیثیت سے الگ الگ, ایک ایک کلمہ الگ الگ یہ ہے جز, اور اجتماعی صورت کے اعتبار سے یہ کیا ہے کل. یوں کہ متضمن اور متضمن کو لے آؤ, دونوں اجتماعی حالت ہے ان کی, اجتماعی صورت جو ہے وہ کیا ہے کلام, اس کو کہیں گے متضمن. اور دونوں کلمے الگ الگ اکیلا زید اور اسی طرح اکیلا قائم یہ جز ہیں, یہ متضمن ہیں. بھائی جواب سمجھ میں آیا کہ دونوں کلمے متضمن بھی ہیں اور متضمن بھی, لیکن دونوں میں الگ الگ اعتبار ہے, متضمن ہیں اور اعتبار سے متضمن ہیں اور اعتبار سے متضمن ہیں جب ان کی اکٹھی مرکب اجتماعی صورت ہو. جب ان کی اجتماعی صورت ہو مرکب صورت ہو تو پھر یہ کیا ہے متضمن, یہ ہے کلام. اور دونوں کی انفرادی حالت ہو الگ 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 زید الگ قائم تو یہ کیا ہے متضمن. تو کلام متضمن ہے دو کلموں کو, تو یہ دو کلمے ان میں اجتماعی حالت کو دیکھا جائے تو یہ کیا ہے کلام, اور انفرادی حالت ایک ایک کلمہ الگ الگ ہو یہ کیا ہے یہ متضمن ہے, یہ کلام کا جز ہے. بات سمجھ میں آ گئی. تو کہتے ہیں ایکون کل واحدۃ منہما فی ضمنہ, یعنی ان میں سے ہر ایک, ان دو کلموں میں سے ہر ایک, دیکھا انفرادی صورت بتا دی, इनफिरादी सूरत दोनों में से हर एक अलहदा अलहदा फी जिमनी ही किसके जिमन में होते हैं, कलाम के जिमन में। तवज्जो है, देखो अयकून कुल्लु वाहिदतिम मिन हुमा, इन दोनों कलीमों में से हर एक जो है फी जिमनी ही कलाम के जिमन में होते हैं, दोनों में से हर एक यानी अलग अलग। इनफिरादी हैसियत से यह है मुतजम्मन और इज्तिमाई हैसियत से यह क्या है, मुतजम्मिन है। तो कहते हैं फल मुतजम्मिनुस मफाइलिन हुवल मजमू। देखो फल मुतजम्मिनु यह है मुब्तदा, हुवल मजमू यह है खबर। तवज्जो है, और दरमियान में इस मफाइलिन यह हाल बनेगा मुतजम्मिन से, कि मुतजम्मिन कौन सा सीगा है इस हाल में इस मफाइलिन की, यह इसमें फाइल है भाई। तवज्जो है, ये तरकीब बता रहे हैं कि इसमें फाइल का फल मुतजम्मिनुस मफाइलिन, तो मुतजम्मिन इस हाल में कि इसमें फाइल का सीगा है, हुवल मजमू वो मजमुआ ही है। वो देखा यहां हुवल मजमू अल मजमू, खबर को भी क्या ले आए, मारिफा ले आए, और खबर मारिफा हो तो किस चीज का फायदा देती है, हसर का। तो मुतजम्मिन हुवल मजमू, मुतजम्मिन के बाद इसमें फाइल का लफ्ज आया था, इसको जरा निकाल दो, हुआ ये फसल है, इसको भी क्या कर दो, निकाल दो, क्या बन गया, फल मुतजम्मिनुल मजमू, तो मुतजम्मिन मजमू ही है, यानी इज्तिमाई हालत से ही ये मुतजम्मिन यानी कलाम कहलाएगा। आगे है वल मुतजम्मन मनुस्मा मफ़ूलिन, और मुतजम्मन इसमें मफ़ूल जो है कुल्लु वाहिदतिम मिन कलिमतैनी, हर एक जो है दो कलिमों में से, देखा हर एक अलग अलग, कुल्लु वाहिदतिन हर एक इनफिरादी हैसियत से, तो इनफिरादी हैसियत इनमें मलहूस हो तो ये मुतजम्मन है, और इज्तिमाई हैसियत मलहूस हो तो ये मुतजम्मिन है यानी कलाम है। फला यल्ज़म इत्तिहादुहुमा, तो लाजिम नहीं आता इन दोनों का इत्तिहाद, यानी मुतजम्मिन और मुतजम्मन का इत्तिहाद लाजिम नहीं आता, लिहाजा साहिब काफिया की तारीफ पर एतराज वाकई नहीं होता। अच्छा भाई, तरकीब कैसे करेंगे, तरकीब कैसे करेंगे अगर फसल बीच में आ जाए या फसल ना आए, जरा जुमला लिखें अपने सामने, तरकीब कर लें भाई। ज़ैदुन अल-क़ाइमु, ज़ैदुन अल-क़ाइमु, देखो भाई ज़ैदुन मरफू लफ्ज़ान मुब्तदा, मरफू क्यों, क्योंकि मुब्तदा है, लफ्ज़ुन क्यों, क्योंकि हम इस पे रफा पर तलफ़ुज़ कर रहे हैं, और अल-क़ाइम मैंने बतलाया था कि इसमें फाइल जो है, इसमें फाइल और इसमें मफ़ऊल जब वो हुदूस के माना में हो तो फिर उस पर जो अलिफ लाम है वो अलिफ लाम इस्मी होगा, और जब वो सुबूत के माना में हो तो फिर वो अलिफ लाम हर्फी होगा। तरकीब के अंदर ये बात मुफस्सल बयान हुई थी। तो अल-क़ाइम भी क्या है, हुदूस के माना में है, हुदूस के माना में है, तो ये अलिफ लाम कौन सा होगा, इस्मी, ये बमाने अल्लज़ी के है, अल्लज़ी, तो इसमें मौसूल है, और इसमें मौसूल के लिए सिला चाहिए, तो ये कायमुन उसका सिला है जी। अल कायम की तरकीब शुरू करें, अब ज़ैदुन मरफू लफ्जन मुब्तदा, अल इसमें मौसूल है, मरफू महल्लन इसमें मौसूल, मरफू क्यों, क्योंकि ये खबर है, और खबर क्या होती है, मरफू, महल्लन क्यों, क्योंकि मबनी है, इसमें मौसूल मबनियात में से है, तो ये अलिफ्लाम मरफू महल्लान इसमें मौसूल, और कायमुन मरफू लफ्जान सिगा इसमें फाइल, तवज्जो है, सिगा इसमें फाइल, और ये क्यों मरफू, क्योंकि इसमें मौसूल अलिफ्लाम की सूरत में आया, तवज्जो है, हर्फ की सूरत में आया, तो इसका जो एराब था वो किस पर जाहिर हुआ, कायम जो सिला है उस पर जाहिर हुआ, तवज्जो है, तो ये मरफू कायम मरफू लफ्जान सीगा इसमें फाइल, इसके अंदर हुआ जमीर मरफू महल्लन इसका फाइल, जो किसको राजे, जो इसमें मौसूल अलिफ्लाम को राजे है, क्योंकि सिले को किससे जोड़ते हैं, मौसूल से। इसमें फाइल अपने फाइल से मिलकर शिबे जुमला होकर सिला, मौसूल सिला मिलकर ये खबर, मुब्तदा खबर मिलकर जुमला इस्मिया खबरिया हुआ। तरकीब समझ में आई? या दूसरी सूरत यह है, अलकायम को आप खोल लें। अलकायम में अलिफ लाम किस माना में? अल्लदी के माना में। और ये कायम मैंने बताया था, अज़ारिब किस माना में? अल्लदी यज़रिबु। और अल मज़रूब किस माना में? अल्लदी युज़रबु। तो इसको भी इसी तरह खोल लें। एक सूरत तो तरकीब की जो मैंने करवा दी आपको, दूसरी सूरत यह, इसको खोलकर भी आप तरकीब कर सकते हैं। आप यूं कहें कि यह अलकायम बमाने अल्लज़ी क़ामा के है, अल्लज़ी क़ामा, अल्लज़ी क़ामा, अल्लज़ी मरफू महल्लन इसमें मौसूल, क़ामा फेल, इसके अंदर हुआ जमीर फाइल जो किसको राजे, अल्लज़ी को, फेल अपने फाइल से मिलकर जुमला फेलिया होकर सिला, मौसूल सिला मिलकर यह खबर हुए मुब्तदा के लिए। तर्जमा क्या है? ज़ैदुनिल क़ाइमु, ज़ैद ही खड़ा है। ज़ैदुनिल क़ाइमु, यह नून कहां से आया जी? ज़ैदुनिल क़ाइमु, याद रखो यह वो तनवीन वाला नून है, ज़ैदुन, इसके आखिर में क्या है? यह नून तनवीन है। और अल क़ाइम के शुरू में हमजा वसली गिर गया, तो ज़ैदुन का नून भी साकिन और अल क़ाइम का लाम भी साकिन, नून और लाम, तो ये इज्तिमाई साकिनैन आया। और इज्तिमाई साकिनैन अला गैरी हद ही है, और इसमें अगर अव्वल हर्फ मद्दा हो तो उसको गिरा देते हैं, लेकिन यहां तो अव्वल है नून और सानी है लाम, तो फिर अव्वल को हजफ नहीं कर सकते, तो फिर उसको कसरा वाली हरकत देते हैं। अस्साकिनु इज़ा हुर्रिका, हुर्रिका बिल कसर, तो इस नून को कसरा वाली हरकत दे दी, तो क्या बन गया? ज़ैदुनिल क़ाइमु, तवज्जो है। और तर्जमा क्या होगा? जैद ही खड़ा है, जैद ही खड़ा है। दूसरी तरकीब कीजिए, ज़ैदुन हुवल क़ाइम, ज़ैदुन हुवल क़ाइम। अच्छा चलो, यहां मैंने क्या बतलाया? ज़ैदुनिल क़ाइमु, मैंने क्या बतलाया? ये अलिफ लाम इस्मी है, क्योंकि कायम कौन सी है? सिफत, इसमें फाइल, इसमें मफूल। जब हुदूस के माना में हो तो फिर ये अलिफ लाम इस्मी होता है, और अगर ये सबूत के माना में हो तो ये हर्फी। पहले मैंने बयान किया था, लेकिन चलो दोबारा समझ लो इसको। मैंने बताया था एक है, एक सिफत जो होती है वो सबूत के माना में होती है, और एक हुदूस, हुदूस जिसमें हो ना हो, पहले ना हो, फिर पाई जाए, फिर खत्म हो जाए, इसको हुदूस भी कहते हैं और तजद्दुद भी कहते हैं। हुदूस और तजद्दुद का एक माना याद रखना, ये जगह जगह लफ्ज आते हैं। हुदूस और तजद्दुद का क्या माना? एक चीज ना हो, पाई जाए और फिर गुजर जाए। जैसे जर्ब है, जर्ब पिटाई जब किसी की जाती है, देखो पहले नहीं थी, फिर पिटाई की और फिर गुजर गई, तो इसको हुदूस कहते हैं। या कियाम है, जैसे एक शख्स खड़ा नहीं था, फिर खड़ा हुआ और फिर अब गुजर गया वो कियाम, अब वो बैठा हुआ। तो ये कुछ सिफतें जो हैं वो हुदूस के माना में होती हैं, यानी उनमें हुदूस और तजद्दुद होता है, उसमें होना है, एक चीज का होना है, पहले नहीं होती, फिर होती है और फिर गुजर जाती है। और एक सिफत वो होती है जिसमें सबूत होता है, उसमें होना नहीं होता, वो जब एक चीज के लिए साबित हो जाती है तो फिर मुद्दत तक साबित ही रहती है। जैसे किसी का कद लंबा है, अब मुझे बताइए जिसका कद लंबा है, क्या ऐसा है कि ये सिफत उससे जुदा हो जाती है, कभी आती है कभी जुदा हो जाती है, यानी कभी कद लंबा होता है कभी कद छोटा होता है, क्या ऐसा होता है? नहीं, जिसकी सिफत ये है कि उसका कद लंबा है, वो कद लंबा ही रहेगा, वो उसके लिए साबित है। मालूम हुआ ये तवीलुल कामत होना, लंबे कद वाला होना, इस सिफत में सबूत है, हुदूस नहीं। जर्ब के अंदर क्या था? हुदूस था। क्या था? और ये लंबा कद इसमें क्या है? सबूत है। यह इसी तरह किसी की सिफत है इलम, भाई वो आलिम है, अब आलिम के साथ क्या ऐसा होता है कि कभी उसका इलम होता है कभी खत्म हो जाता है, कभी होता है फिर खत्म हो जाता है, फिर होता है फिर खत्म हो जाता है, क्या ऐसा है? या इलम उसके लिए जब साबित है तो अब साबित ही रहेगा, साबित ही रहेगा। तो हुदूस और तजद्दुद का माना है एक सिफत जो कभी रहती है कभी खत्म हो जाती है, कभी रहती है कभी खत्म हो जाती है। कियाम आप करते हैं, ये हर वक्त कियाम आपके साथ नहीं, कभी है कभी नहीं। जर्ब आप लगाते हैं, कभी जर्ब है लगाते हैं कभी नहीं लगाते। आप पानी पीते हैं, कभी पीते हैं कभी नहीं पीते, आप सबक पढ़ते हैं कभी पढ़ते हैं कभी नहीं पढ़ते, आप खाना खाते हैं कभी खाते हैं और कभी नहीं खाते, तो इन तमाम सिफतों में हुदूस और तजद्दुद है भाई, कभी होती हैं और कभी नहीं होती। और जबकि कुछ सिफात में सबूत होता है, जब वो एक चीज के लिए साबित हो जाए तो उससे जुदा नहीं होती भाई, जैसे कद का लंबा होना और जैसे आलिम का होना, ये सब क्या है, इनमें सबूत है, एक चीज के लिए जब साबित हो गई तो साबित ही रहेगी, उससे जुदा नहीं होती। बात समझ में? तो वो इसमें फाइल जो हुदूस के माना में हो उस पर जब अलिफ लाम आ जाए तो वो अलिफ लाम इस्मी होता है। तो अलकाइम, तो ये कायम कौन सी सिफत है, इसमें हुदूस और तजद्दुद है, कभी कयाम इंसान के लिए होता है कभी नहीं होता, कभी बैठा होता है कभी लेटा होता है। और इसी तरह अजारिब, यह भी क्या है, अलिफ लाम इस्मी, तो ये अल्लजी के माना में है। लेकिन अल आलिम, ये आलिम सिफत पर जो अलिफ लाम आया ये वही अलिफ लाम हरफी है, ये अलिफ लाम इसमें मौसूल नहीं है। बात समझ में आ गई? तो वो इसमें फाइल या इसमें मफूल जिसमें हुदूस और तजद्दुद वाला माना हो उन पर जब अलिफ लाम आएगा तो वो बमाने अल्लजी के है, वो इसमें मौसूल है। और वो इसमें फाइल और इसमें मफूल जिसमें हुदूस और तजद्दुद नहीं है बल्कि सुबूत है, उस पर जो अलिफ लाम आए वो अलिफ लाम इस्मी नहीं है बल्कि वो अलिफ लाम हरफी है भाई, और वो उस लफ्ज को मारिफा बनाने के लिए लाया गया है। बात समझ में आ गई? जी, हम तरकीब कर रहे थे। पहली तरकीब ज़ैदुनिल क़ाइमु आपने कर ली कि जैद ही खड़ा है। दूसरी तरकीब भाई ज़ैदुन हुवल क़ाइमु, इसकी तरकीब कैसे होगी, ज़ैदुन मरफू लफजान मुब्तदाए अव्वल, मुब्तदाए अव्वल हुआ मरफू, देखो ये ज़ैदुन है मुब्तदा और हुवल काइमु ये पूरा जुमला है, ये फिर मुब्तदा खबर है, हुआ मुब्तदा अल काइमु उसकी खबर, ये मुब्तदा खबर मिलकर पूरा जुमला बनेगा और फिर ये पूरा जुमला ज़ैदुन की खबर बनेगा। तवज्जो है? तो ज़ैदुन मरफू लफजान मुब्तदाए अव्वल, हुआ मरफू महल्लान मुब्तदाए सानी, अल काइम में फिर वही तरकीब, अलिफ लाम बमाने अल्लजी के इसमें मौसूल है, मरफू महल्लान ये खबर है, और कायमुन मरफू लफजान सिगा इसमें फाइल, इसके अंदर हुआ जमीर मरफू महल्लान, इसका फाइल जो किसको राजे, जो अलिफ लाम को राजे, जो इसमें मौसूल है, इसमें फाइल अपने फाइल से मिलकर शिबे जुमला होकर ये सिला हुआ अलिफ लाम के लिए, इसमें मौसूल के लिए। तवज्जो है? इस पर आपके जहन में इश्काल आएगा कि इसमें मौसूल का सिला तो हमेशा क्या होता है, जुमला होता है, और ये तो शिबे जुमला है। तो जवाब ये कि यहां पर इसमें मौसूल अलिफ लाम की सूरत में आया है, और अलिफ लाम मुफरद पर दाखिल होता है, जुमले पर दाखिल नहीं होता। ये तो ये असल कायमुन असल में कामा था, क्या था, कामा जुमला था, लेकिन उस पर तो अलिफ लाम दाखिल नहीं हो सकता, तो उस कामा को किससे बदल दिया, कायमुन से बदल दिया गया, मुफरत की सूरत दे दी गई। तो यह सूरत तो मुफरत की है, हकीकत में यह क्या है, जुमला है। तो यह अल कायम किस माना में है, अल्लजी कामा के माना में, अल्लजी कामा के माना में है। तो कायमुन मरफू लफ्जन सीगा इसमें फाइल, इसके अंदर हुआ जमीर मरफू महल्लन इसका फाइल, जो किसको राजे, जो इसमें मौसूल को राजे, इसमें फाइल अपने फाइल से मिलकर शिबे जुमला होकर सिला, मौसूल सिला मिलकर ये खबर हुई मुब्तदाए सानी के लिए, किसके लिए, मुब्तदाए सानी के लिए, और मुब्तदाए सानी अपनी खबर से मिलकर ये क्या बना, जुमला बना, क्या बना, जुमला, और ये पूरा जुमला खबर है किसके लिए, जैद के लिए। और जुमले को जब भी किसी चीज से जोड़ना हो दरमियान में रबत जरूरी, तो क्या रबत देंगे, ये जो हुआ जमीर है ये किसको राजे है, जैद को राजे, ये रबत आ गया। तो मुब्तदा खबर मिलकर जुमला इस्मिया खबरिया होकर ये खबर हुई जैद के लिए, मुब्तदा खबर मिलकर जुमला इस्मिया खबरिया हुआ। तरकीब समझ में आ गए? तो वजह है ये जैद भी मारिफा, आगे अलकायम भी मारिफा, तो दरमियान में फसल ले आए हुआ, तवज्जो है। और यह फसल मैंने बताया था, बास के नजदीक यह जमीर है, बास के नजदीक यह जमीर नहीं, जिनके नजदीक यह जमीर है, तवज्जो है, यह हमने उनके मुताबिक तरकीब की, हुआ को क्या बनाया, जमीर बनाया या नहीं, जमीर बनाया और बाकायदा इस पर एराब भी आया, ये उनके नजदीक है। और बाज कहते हैं नहीं, ये फसल है, जमीर जैसी सूरत है लेकिन यह जमीर नहीं, यह हर्फ है। उनके नजदीक वही तरकीब होगी जो जैदुनिल कायमों की थी, हुआ के बारे में सिर्फ इतना कह देंगे यह फसल है दरमियान में, ला महल लहू मिनल एराब, इसके लिए कोई महल एराब। कैसे होगी तरकीब? जैदुन मरफू लफजान मुब्तदा, हुआ फसल ला महल लहू मिनल एराब, अल कायम अलिफ्लाम इसमें मौसूल है, मरफू महलन इसमें मौसूल, कायमुन मरफू लफ्जन सीगा इसमें फाइल, इसके अंदर हुआ जमीर मरफू महलन इसका फाइल जो किसको राजे, जो अलिफ्लाम यानी इसमें मौसूल को राजे, इसमें फाइल अपने फाइल से मिलकर शिबे जुमला होकर सिला मौसूल के लिए, मौसूल सिला मिलकर यह खबर हुआ जैदुन के लिए, मुब्तदा अपनी खबर से मिलकर जुमला इस्मिया खबरिया हुआ। तो बाज इस हुआ को क्या बनाते हैं? फसल, कि ये हर्फ है, ये इसम है ही नहीं। और बाज कहते हैं ये जमीर ही है, ये कोई हर्फ वगैरह नहीं, लिहाजा इसकी भी तरकीब करना पड़ेगी। तरीका समझ में आ गया? यही तरकीब यहां पर भी थी। ये जो जामी में आपने पढ़ा क्या था? जामी में फल मुतजमीनु हुवल मजमू, तवज्जो है, फल मुतजमीनु हुवल मजमू, इसके अंदर ये जो हुआ है, आप चाहें तो इसको जमीर जमीर कहें, आप चाहें तो इसको फसल बना दें, और ला महल लहू मिनल एराब। तो कहते हैं फल मुतजमीन उसमा फाइल इन हुअल मजमू, तो मुतजमीन इस हाल में कि इसमें फाइल का सिगा है वो मजमुआ ही है, वल मुतजमन उसमा मफूल इन, और मुतजमन इस हाल में कि इसमें मफूल का सिगा है, इसम मफूल इन, ये हाल बन रहा है ना और हाल मनसूब होता है तो इस पर नसब पढ़ेंगे, वल मुतजमन उसमा मफूल इन, और मुतजमन इस हाल में कि इसमें मफूल का सिगा है, कुल्लु वाहिदतिम मिन कलिमतैनी, दोनों कलिमों में से हर एक है, फला यल्जमु इत्तेहादुहुमा, तो लाजिम नहीं आता इन दोनों का इत्तेहाद, किन दोनों का, यानी मुतजमिन और मुतजमन का इत्तेहाद लाजिम नहीं आता, तो मुतजमिन है जैदुन कायमुन, मुतजमिन है इज्तिमाई हैसियत से, इज्तिमाई सूरत के एतबार से, और यही जैदुन कायमुन ये मुतजमन है इनफिरादी हैसियत से, दोनों अलग अलग एतबार से, एक कलिमा जैद एक कलिमा कायम, ये क्या है? मुतजमन है। बात समझ में आ गई? आगे देखिए भाई, बिल इसनादी ऐतजमुनन हासिलन बिसबबी इसनादी इहदल कलिमतैनी इलल उखरा, बिल इसनाद के बाद साहिब जामी ऐतजमुनन हासिलन बिसबबी इसनाद की इबारत निकालकर बतलाना ये चाहते हैं कि ये मफूल मुतलक बन रहा है। ये क्या है भाई? मफूल मुतलक किसे कहते हैं? वो मस्तर जो माकबल फेल के माना में हो, माकबल में फेल क्या आया था? मा तजम्मना, तजम्मना फेल आया था, और तजम्मना का मस्तर क्या आएगा? तजम्मुनन आएगा, तो वही बतला दिया आई तजम्मुनन। तो ये बिल इसनाद मफूल मुतलक है बेअतबार मौसूफ महजूफ के। मेरी तरफ तवज्जो करें भाई, बिल इसनाद क्या है? मफूल मुतलक है बेअतबार मौसूफ महजूफ के। किसके? मौसूफ महजूफ। देखो मैंने बताया था, जार मजरूर अगर नकेरा के बाद आ जाएं तो ये अमूमन उसके लिए सिफत बनते हैं। तवज्जो है, जार मजरूर नकेरा के बाद आए और किसी से न जुड़ रहे हों तो उसके लिए क्या बनेंगे? सिफत बनेंगे। यहां पर भी मा तजम्मना से मफूल मुतलक क्या आया? तजम्मुनन। तो इबारत यूं हो गई, मा तजम्मन कलिमतैनी तजम्मुनन बिल इसनादी, तजम्मुनन, और तजम्मुनन है नकेरा, और नकेरा के बाद क्या आया? बिल इसनाद जार मजरूर, और नकेरा के बाद जार मजरूर आए तो वो उसके लिए क्या बनता है? सिफत। और बराहे रास सिफत बनेगा या मुतअल्लक के साथ जुड़कर सिफत बनेगा? मुतअल्लक के साथ जुड़ेगा। तो यहां हासिलन या साबितन, कोई एक मुतअल्लक निकाल लें, तजम्मुनन साबितन बिल इसनादी या तजम्मुनन हासिलन बिल, तवज्जो है, तजम्मुनन मौसूफ और बिल इसनाद उसकी सिफत, और मुतअल्लक क्या निकाला? हासिला, और उसको भी मंसूब निकाला। क्यों? क्योंकि ये सिफत है, और सिफत पर वही एराब आता है जो किस पर आता है? मौसूफ पर। और तजमुनन मौसूफ मंसूब था, तो हासिलन बिल इसना जो उसकी सिफत है वो भी क्या होगी? मंसूब होगी। बात समझ में आ गई जी? अब कैसे कहेंगे बिल इसनाद? बताइए मुझे, इधर देखिए, बिल इसनाद ये मफूल मुतलक है, खुद ये खुद मफूल मुतलक है, ये इसका मौसूफ जो है वो मफूल मुतलक है, इसका मौसूफ मफूल मुतलक है। तो यूं कहेंगे कि बिल इसनाद मफूल मुतलक है बएतबार मौसूफ महजूफ के, बएतबार मौसूफ, वो महजूफ भी तो है ना, हजफ है, इबारत में तो जिक्र नहीं है। तो बिल इसनाद क्या है? मफूल मुतलक है बएतबार मौसूफ महजूफ के। ऐ तज़म्मुनन हासिलन, देखा मफूल मुतलक निकालकर बतला दिया, और हासिलन के जरिए बतला दिया यह सिफत है बिल इसनाद। और बिसबब इसनाद, बिसबब इन बा के बाद सबब का लफ्ज निकालकर साहिब जामी ने बतला दिया कि बिल इसनाद में बा सबबिया है। ये बा क्या है? अल कलामु मा तज़म्मन कलिमतैन बिल इसनाद, कलाम वो है जो मुतज़म्मिन हो दो कलिमों को। ऐसा तज़म्मुन जो हासिल हो रहा है इसनाद के सबब से, इसनाद की वजह से। तवज्जो है भाई, कलाम के अंदर इसनाद जरूरी है। दो कलिमे कोई आप ले आए और आप कहें ये कलाम बन गया, नहीं नहीं, जैदुन बकरुन कलाम है नहीं, जैद अलग है बकरोन अलग है, खालिदुन अमरुन कलाम है नहीं, दो कलिमे तो है लेकिन कलाम नहीं, गुलाम जैदीन मुजाफ मुजाफिले हैं लेकिन ये कलाम नहीं, तो दो कलिमे तो हैं लेकिन कलाम नहीं। कलाम के लिए क्या जरूरी है? दो कलिमे भी हों और उनके दरमियान क्या होना चाहिए? इसनाद होना चाहिए। तो कलाम वो है जो मुतजमिन हो दो कलिमों को। ऐसा तजमुन बिल इसनादी, जो किसकी वजह से हो? इसनाद की वजह से हो। इबारत समझ में आ गई? ऐ तज़म्मुनन हासिलन बिसबबि इस्नादि इहदल कलिमतैनि इलल उखरा, यानी ऐसा तज़म्मुन जो हासिल हो रहा हो बवजह एक कलिमे के दूसरे की तरफ इस्नाद की वजह से। वो तज़म्मुन जो हासिल हो रहा हो किसकी वजह से? इस्नाद की वजह से हासिल हो रहा हो भाई, यानी उन दो कलिमों में इस्नाद हो। याद रखो ये जुमलों में कई कई तरकीबें होती हैं भाई। साहिब जामी ने बिल इसनाद को क्या बनाया? मफूल मुतलक बनाया बएतबार मौसूफ महजूफ के। आप चाहें तो बिल इसनाद को हाल बना दें। तजम्मना के अंदर जो हुआ जमीर है, हाल किसे कहते हैं? जो फाइल या मफूल की हालत बयान करे, तो तजम्मना के अंदर हुआ जमीर है जो मां को राजे है, उससे इसको हाल बना दें। मा तजम्मना हुआ, हुआ जमीर जुलहाल, और हासिलन बिल इसनादी, इसको क्या कर दें? हाल बना दें। या तीसरी तरकीब यह भी कर सकते हैं कि कलिमतैन है नकेरा, तवज्जो है, कलिमतैन है नकेरा, और नकेरा के बाद बिल इसनाद जार मजरूर आया, और मैंने बताया था इस सूरत में यह नकेरा के लिए सिफत बनता है, तो आप इसको कलिमतैन के लिए सिफत भी बना सकते हैं। कलिमतैनी साबितातैनी बिल इसनादी, कलिमतैन ये बिल इसनाद को क्या बनाए? कलिमतैन के लिए सिफत, और सिफत बराह रास्त बनेगी या मुताल्लक भी निकालेंगे? मुताल्लक भी निकालेंगे, और मुताल्लक मौसूफ के मुताबिक निकालते हैं। कलिमतैन मुअन्नस है और मंसूब है, तो लिहाजा साबितानी, ये भी मुअन्नस निकाला, और फिर इसको हालत नस्बी में ले गए, साबितैनी कलिमतैनी साबितैनी बिल इसनाद, दो ऐसे कलिमे जो इसनाद के साथ हों। बात समझ में आ गई? अब इसनाद किसे कहते हैं? कहते हैं वल इसनाद निस्बतु इहदल कलिमतैन हकीकतन औ हुक्मन इलल उखरा। इसनाद कहते हैं कि निस्बत हो दो कलिमों में से एक की, और वो दो कलिमे हकीकतन औ हुक्मन, चाहे वो कलिमे हकीकतन हो या हुक्मन। ये कैद ऊपर भी गुजरी थी कि कलाम वो है जो मुतजमिन है दो कलिमों को, वो चाहे कलिमे क्या हो, हकीकतन हो या हुक्मन, वही कैद हर जगह बढ़ा रहे हैं। इस कैद का क्या फायदा है? अभी आगे आने वाला है, उसका जिक्र आ जाएगा। तो कहते हैं वल इसनाद। भाई इधर देखिए, इसनाद को समझ लें। इसनाद इसे कहते हैं कि दो कलिमे हैं, उनमें से एक की निस्बत करना दूसरे कलिमे की तरफ, इस तौर पर कि सुनने वाले को बात समझ में आ जाए, उसको फायदा हासिल हो जाए कि मुझे क्या कहना चाहता है। तवज्जो है, इसनाद किसे कहते हैं? एक कलिमे की निस्बत करना दूसरे कलिमे की तरफ इस तौर पर कि सुनने वाले को पूरा फायदा हासिल हो जाए, यानी उसको बात समझ में आ जाए। फायदा हासिल होने का क्या मतलब? उसको बात समझ में आ जाए। मसलन मैंने कहा जैदुन कायमुन, आपको पूरी बात समझ में आई? क्या समझ में आया? कि जैद खड़ा है, मैं आपको एक बात बतला रहा हूं। मैं दूसरी बात करता हूं, मसलन देखो मैं कहता हूं अकामा जैदुन, क्या जैद खड़ा है? जी, आपको पूरी बात समझ में आ गई कि ये मुझसे सवाल पूछा जा रहा है, आपको पूरी बात समझ में आ गई। तीसरी सूरत, मैं आपसे कहता हूं इजरिब जैदन, जैद की क्या करो? पिटाई करो, आपको बात समझ में आ गई कि मुझसे एक काम तलब किया जा रहा है। तवज्जो है, मैं क्या वजाहत किस चीज की कर रहा हूं? इसनाद इसे कहते हैं कि एक कलीमे का दूसरे की तरफ निस्बत की जाए इस तौर पर कि सुनने वाले को पूरा फायदा हासिल हो। क्या हासिल हो?
पूरा फायदा हासिल हो।
पूरे फायदे से क्या मुराद है मैंने बतलाया, यानी उसको बात समझ में आ जाए कि ये क्या कहना चाहता है, ये मुझे कोई खबर देना चाहता है, या मेरे से कोई सवाल पूछना चाह रहा है, या मेरे से कोई काम तलब कर रहा है। तवज्जो है, मैंने कहा जराबा जैदुन, आपको बात समझ में आई कि जैद ने क्या किया है? पिटाई की है, आपको बात समझ में आ गई, बात पूरी हो गई। अगर मैं यूं कहूं गुलाम उज़ैदीन, जैद का गुलाम, आपको पूरी बात समझ में आई? नहीं, आप कहेंगे भाई उसको गुलाम उज़ैदीन, जैद के गुलाम को क्या हुआ, आप पूरी बात तो करें। तो देखो ये दो कलिमे तो हैं और इनमें से एक की निस्बत दूसरे की तरफ भी हो रही है, लेकिन क्या फायदा ताम है? फायदा ताम किसे कहते हैं? कि सुनने वाले को पूरी बात समझ में आ जाए। मैंने कहा जा अज़ैदुन, आपको पूरी बात समझ में आ गई, मैंने क्या कहा? जैद आ गया है। मैंने कहा अज़रबा जैदुन, क्या जैद ने पिटाई की है? आपको पूरी बात समझ में आ गई कि मुझसे कोई सवाल पूछा जा रहा है। मैंने कहा ला तज़रिब अमरन, अमर की पिटाई न करो, आप समझ गए कि मुझसे तर्के ज़र्ब का मुतालबा किया जा रहा है कि ज़र्ब लगाना छोड़ दो। तो इसनाद किसे कहते हैं? एक कलिमे की निस्बत करना दूसरे कलिमे की तरफ कि सुनने वाले को पूरा फायदा हासिल हो। पूरे फायदे का क्या माना? उसको बात समझ में आ जाए कि मुझे कुछ बतलाया जा रहा है, या मुझसे कुछ पूछा जा रहा है, या मुझसे कोई चीज तलब की जा रही है। तो कहते हैं वल इसनाद निस्बत इहदल कलिमतैन हकीकतन औ हुक्मन, इसनाद इसे कहते हैं कि दो कलिमे चाहे वो हकीकतन हो या हुक्मन, उनमें से एक की निस्बत करना इलल उखरा दूसरे कलिमे की तरफ, बिहैसु तुफीदुल मुखातबा, इस तौर पर कि ये फायदा दे, ये निस्बत करना फायदा दे मुखातब को, फायदतन तामतन, पूरा फायदा, इसको कहते हैं इसनाद। फकौलुहु मा यतनावुलुल मुहमलाति वल मुफरदाति वल मुरक्कबातिल कलामियत वल गैरल कलामियति। अब जो तारीफ की, अल कलामु मा तज़म्मन कलिमतैन बिल इस्नादी, आपने पढ़ा है तारीफ किस पर मुश्तमिल होती है? जिंस और फसल पर। तो यहां जिंस के दर्जे में क्या है और फसल के दर्जे में क्या है, या यूं कहें इस तारीफ में जो एक एक लफ्ज जिक्र किया गया, मा तज़म्मन कलिमतैन बिल इस्नादी, एक एक कैद का क्या फायदा है? तवज्जो है। तो कहते हैं जब मातिन ने कहा अल कलामु मा से क्या मुराद? लफ्ज। तो जब लफ्ज कहा तो इसमें सारी दुनिया के लफ्ज आ गए, चाहे उनका कोई माना हो चाहे माना ना हो, चाहे वो मुफरद हो चाहे मुरक्कब हो, सारे अल्फाज आ गए, मुहमल भी आ गए, मुफरदात भी आ गए, मुरक्कबात भी आ गए। फिर मुरक्कबात दो किस्म पर हैं, कुछ मुरक्कबात कलामिया हैं, कुछ मुरक्कबात गैर कलामिया हैं, सब इसके अंदर दाखिल हो गए। भाई सब इसके अंदर दाखिल हो गए। मुरक्कबात कलामिया जो पूरा कलाम हो, जैदुन कायमुन, क्या तर्जमा? जैद खड़ा है। देखो पूरा कलाम है, पूरा कलाम है, इसमें बात पूरी है, तो यह मुरक्कब कलामी है। और एक मुरक्कब गैर कलामी होता है, मुरक्कब तो होता है लेकिन कलाम नहीं होता, जैसे गुलाम उज़ैदीन, जैद का गुलाम, मुरक्कब तो है, दो कलीमे तो हैं, लेकिन कलाम नहीं, पूरी बात इसमें नहीं है। या जैसे मौसूफ सिफत होते हैं, रजुलन शुजाउन, बहादुर आदमी, दो कलीमे हैं, मुरक्कब तो है लेकिन कलाम नहीं, बात पूरी नहीं। तो मुरक्कब कितनी किस्म पर? दो किस्म पर, या वो कलामी होगा या गैर कलामी। कलामी का क्या माना? वो मुरक्कब जो कलाम है जिसमें बात पूरी है, और मुरक्कब गैर कलामी जो मुरक्कब है लेकिन पूरा कलाम नहीं है। आसान लफ्जों में यूं कहो, एक है मुरक्कब ताम, एक है मुरक्कब नाकिस, जो आप पढ़ चुके हैं जगह जगह। मुरक्कब कलामी से मुराद है मुरक्कब ताम जिसमें बात पूरी हो, और मुरक्कब गैर कलामी से मुराद है मुरक्कब नाकिस जिसमें बात पूरी न हो। गई तो जब कहा अल कलिमा तो मा तजम माना, मा का लफ्ज लाए, कलिमा वो लफ्ज है, तो सारे लफ्ज आ गए, चाहे वो मुहमल हो, चाहे मुफरद हो, चाहे मुरक्कब हो, फिर चाहे वो मुरक्कब कलामी हो, चाहे गैर कलामी, सारे इसके अंदर दाखिल हो गए। तो कहते हैं फकौलुहू मा, मातिन का कौल जो मा आया, यतनावलुल मुहमलाति वल मुफरदाति वल मुरक्कबाति अल कलामियत वल गैर अल कलामियति, के मा शामिल है, यतनावलु का क्या माना? शामिल। तो मातिन का कौल मा जो है वो शामिल है मुहमलात को भी और मुफरदात को भी और मुरक्कबात कलामिया को भी, वल गैर अल कलामियत, इसको गैरा पढ़े भाई, गैरा ये सिफत है मुरक्कबात की, अल मुरक्कबात इल, तवज्जो है इबारत पे। فقوله ما يتناول المهملات والمفردات والمركبات الكلامية والغير الكلامية। भाई सवाल, अलमोहमलाती मैंने इसको मजरूर क्यों पढ़ा? अलमोहमलाती वल मुफरदाती वल मुरक्कबाती, जी शाबाश, ये मजरूर नहीं है, ये मंसूब है, लेकिन ये जमा मुअन्नस सालिम है, और जमा मुअन्नस सालिम का नसब आता ही कसरा के साथ है, तो ये है तो नसब, सूरत किस जैसी है? जार जैसी सूरत है, तो ये सब मंसूब हैं। तो अल मुरक्कबाती ये मंसूब है, अल कलामियता ये क्या बनेगा इसकी सिफत, वल गैर अल कलामियती यहां गैरा पर नसब पड़े, और अल कलामियती ये मुजाफिले है तो ये मजरूर होगा, गैरा मुजाफ, अल कलामियती मुजाफोन इले। तो कहते हैं फकौलुहु मा यतनावलुल मुहमलाति वल मुफरदाति वल मुरक्कबाति अल कलामियत वल गैर अल कलामियति, तुम मातिन का कौल मा जो है ये शामिल है मुहमलात को भी, यानी मुहमल लफ्ज भी इसके अंदर आ गए, वल मुफरदाति मुफरद लफ्जों को भी ये शामिल है, वो भी इसमें दाखिल हो गए, वल मुरक्कबाति अल कलामियता और मुरक्कबात कलामिया भी इसके अंदर दाखिल हो गए, ये उनको भी शामिल है, वल गैर अल कलामियति और मुरक्कबात गैर कलामिया को भी ये शामिल है। अब अगली कैद क्या आई? तज़म्मना कलिमतैनी, मा तज़म्मना कलिमतैन, मतन में जो आया था जो दो कलिमों को मुतज़म्मिन हो, तो मा से क्या मुराद था? लफ्ज़। इसमें सारी दुनिया के अल्फाज आ गए, लेकिन जब आगे कहा तज़म्मना कलिमतैनी, जो मुतज़म्मिन हो किसको? दो कलिमों को, तो मुहमल निकल गए, क्योंकि बात कलिमों की आ गई, मुहमल क्या हुए? निकल गए, मुहमल वो लफ्ज जिनका कोई माना ना हो, वो क्या हो गए? खारिज, क्योंकि इन्होंने कहा मा तज़म्मना कलिमतैनी, कलिमतैन की बात कर दी, मुहमल निकल गए, नीज मुफरद भी निकल गए, क्योंकि इन्होंने क्या कहा? मा तज़म्मना कलिमतैनी, जो दो कलिमों को मुतज़म्मिन हो, मालूम हुआ जो एक कलिमा हो उसको कलाम नहीं कहेंगे, तो मुहमल भी निकल गए और मुफरद भी निकल गए, बात समझ में आ गई। तो कहते हैं वह भी कैदी तज़म्मना कलिमतैनी, कहते हैं तज़म्मना कलिमतैन की कैद के जरिए खरजतिल मुहमलात वल मुफरदात, मुहमलात भी निकल गए तारीफ से, वल मुफरदात और मुफरदात भी निकल गए, मुरक्कबात अभी भी सारे बाकी हैं, चाहे वो कलामी हो चाहे गैर कलामी, वो अभी भी दाखिल हैं, लेकिन जब आगे बिल इसनाद की कैद आ गई तो अब मुरक्कबात गैर कलामी निकल गए, सिर्फ कौन से मुरक्कबात रह गए? जिनमें इसनाद होगा यानी कलाम पूरा होगा वो शामिल हैं, और गुलाम उजैदीन यानी मुजाह मुजाफिले जो हैं वो भी निकल गए, और रजुलन शुजाउन यानी मौसूफ सिफत भी निकल गए, क्योंकि ये मुरक्कबात गैर कलामी हैं। तो कहते हैं वह भी कैदिल इसनादी, और इसनाद की कैद के जरिए खरजतिल मुरक्कबातुल गैरुल कलामियती, और इसनाद की कैद के जरिए वो मुरक्कबात निकल गए जो गैर कलामी हैं। مثل غلامی زیدین, جیسے کہ غلامی, یہ مضاف مضاف الیہ یہ بھی نکل گئے, ورجل فاضل یعنی موصوف صفت بھی نکل گئے, وبقیت المرکبات الکلامیت اور مرکبات کلامیہ اس تعریف کے اندر باقی رہ گئے, سوا ان کانت خبریتن, چاہے وہ مرکبات کلامی کس قسم کے ہوں, خبری ہوں یعنی خبر کی قبیل سے ہو, یا آگے آئے گا انشائیتن یا انشاء کی قبیل سے ہوں. بھائی توجہ ہے, تو جو بھی یعنی جس میں بات پوری ہو, میں نے آپ سے ابھی مثالیں ذکر کی, الکلام ما تضمن کلمتین بالاسناد, کلام وہ ہے جو متضمن ہو دو کلموں کو بالاسناد, اسناد کے ساتھ, اور اسناد کس کو کہتے ہیں, ایک کلمے کی نسبت کرنا دوسرے کلمے کی طرف کے سننے والے کو پورا فائدہ حاصل ہو. پورا فائدہ کیا معنی حاصل ہو, اس کو پوری بات سمجھ میں آ جائے کہ مجھے کچھ بتایا جا رہا ہے یا مجھ سے کچھ پوچھا جا رہا ہے یا مجھ سے کوئی چیز طلب کی جا رہی ہے. ضرب زیدن یہ کون سا جملہ ہے, جملہ خبریہ ہے, اور اضرب زیدن یہ کون سا جملہ ہے, یہ استفہامیہ ہے, یہ انشاء ہے, تو یہ جملہ انشائیہ یہ بھی کلام ہے. اسی طرح اضرب زیدن یہ کون سا جملہ ہے, یہ جملہ انشائیہ ہے, امر ہے, امر ہے, امر انشاء کی قسم ہے. تو تمام مرکبات غیر کلامی نکل گئے اور مرکبات کلامی رہ گئے, چاہے وہ خبر کی قبیل سے ہوں چاہے انشاء کی قبیل سے ہوں. تو کہتے ہیں وہ بقیت المرکبات الکلامیت, اور مرکبات کلامیہ باقی رہ گئے, سوا ان کانت خبریتن, برابر ہے کہ وہ مرکبات خبری ہوں, مثل ضرب زیدن جیسے ضرب زیدن, وضربت ہندن اور ضربت ہندن. دیکھو ایک مذکر کی مثال ہے ایک مؤنس کی, یعنی دونوں جملہ فعلیہ ہیں لیکن ایک میں فاعل مذکر ذات ہے ایک میں مؤنس ہے. ترکیب کریں, ضربا زیدن, ضربا فعل, زیدن مرفوع لفظاً فاعل, فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. ضربت ہندن, ہند قدیم عرب میں عورتوں کا نام تھا, عام استعمال ہوتا تھا. وضربت ہندن, ہند نے پٹائی کی, ضربت فعل, ہندن مرفوع لفظاً فاعل, فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. آگے آ رہا ہے, او انشائیتن مثل اضرب, اضرب اضرب کیسے ہے, اضرب فعل, انت ضمیر اس کے اندر مرفوع محلن اس کا فاعل, فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا کیونکہ امر ہے. ولا تضرب, لا تضرب فعل نہیں, اس کے اندر انت ضمیر مرفوع محلن اس کا فاعل, فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا. توجہ ہے, اب دیکھو اضرب حقیقت میں یہ ایک کلمہ ہے لیکن اس کے اندر ضمیر چھپی ہوئی ہے, کون سی ضمیر, انت, اور یہ آپ پہلے پڑھ چکے, شروع میں بتایا تھا کہ لفظ جو ہے لفظ کبھی حقیقتن ہوتا ہے کبھی حکمن لفظ ہوتا ہے, تو یہاں پہ بھی اضرب حقیقتن تو ایک لفظ ہے لیکن حکمن یہ دو کلمے ہیں, ایک خود اضرب ایک اس کے اندر انت ضمیر جو چھپی ہوئی ہے, اور انت ضمیر اس کے اندر چھپی ہوئی ہے, اور انہوں نے آپ کو یہ بھی بتلایا تھا کہ جو فعل کے اندر ضمیر چھپی ہوتی ہے اس کے لیے عرب نے کوئی لفظ وضع نہیں کیا, اس کے لیے جو ہم جو کہہ رہے ہیں اضرب کے اندر انت چھپی ہوئی ہے, انت نہیں ہے, اس کے اندر جو ضمیر چھپی ہوئی ہے اس کے لیے عربوں نے کوئی لفظ وضع ہی نہیں کیا. انت تو ضمیر منفصل ہے اور اضرب کے اندر تو کون سی ضمیر ہوگی, ضمیر متصل ہوگی, تو متصل اور چیز ہے منفصل اور چیز, لیکن اس کے لیے عربوں نے کوئی لفظ ہی نہیں مقرر کیا, تو ہمیں مجبوراً یہ انت ضمیر منفصل کو مستعار یعنی عاریتن استعمال کرنا پڑا اس ضمیر کو بتلانے کے لیے. تو انت ضمیر وہ حکمن وہ بھی کلمہ ہے, وہ کیا ہے, وہ کلمے کے حکم میں ہے. تو وہ مرکبات چاہے خبری ہوں جیسے ضربا زیدن و ضربت ہندن و زیدن قائم او انشائیتن, یا وہ مرکبات انشائی ہوں مثل اضرب ولا تضرب, فإن كل واحد منهما تضمن کلمتین, اس لیے کیونکہ ان میں سے ہر ایک متضمن ہے دو کلموں کو, ان سب میں دو کلمے آ رہے ہیں. ضربا زیدن اس میں دونوں کلمے حقیقتن ہیں, ایک ہے ضربا اور ایک کیا ہے زیدن, مثالوں پر نظر ہے, ان میں اس میں دونوں کلمے کیا ہیں, हकीकतन, जाराबत हिंदुन, इसमें भी दोनों कलिमे हकीकतन हैं। एक कलिमा क्या जाराबत और दूसरा हिंदुन। जैदुन कायमुन, इसमें हकीकतन दोनों कलिमे हैं, एक कलिमा जैदुन दूसरा कलिमा कायमुन। और इजरिब, इसके अंदर हकीकतन एक कलिमा है और दूसरा हुक्मन है। वला तजरिब, इसके अंदर भी एक कलिमा हकीकतन है और दूसरा हुक्मन है। तो फैन कुल्ल वाहिद मिन्हुमा तजम्मन कलिमतैनी, इसलिए क्योंकि इनमें से हर एक मुतजम्मिन है दो कलिमों को। भाई बाकियों में तो बात वाजे थी, इजरिब और ला तजरिब में बात वाजे नहीं थी कि ये तो एक कलिमा है। तो कहते हैं भाई हमने आपको बतलाया था शुरू में कि वो दो कलिमे चाहे हकीकतन हो चाहे हुक्मन हो, इन दोनों में दूसरा कलिमा हुक्मन मौजूद है, हुक्म लगा दिया उस पर कि ये भी क्या है एक कलिमा है, क्योंकि उस पर हमने कलिमे के अहकाम जारी करने हैं। तवज्जो है भाई, क्यों इजरिब में अंत का एतबार क्यों किया, क्योंकि उस पर कलिमे के अहकाम जारी करने हैं, इसको फाइल बनाना है और फाइल तो लफ्ज हुआ करता है, तो मानना पड़ेगा कि इसके अंदर कौन सा लफ्ज है, अंता छुपा हुआ है, इसको फाइल बनाते हैं। कभी फिर इसकी ताकीद लाते हैं, ताकीद लफ्ज की लाई जाती है। इसी तरह कभी इस पर आतफ करते हैं, आतफ लफ्ज पर किया जाता है। कभी इसके लिए बदल आगे लेकर आते हैं, तो मुबदल मिन्हू हमेशा क्या होता है लफ्ज होता है। तो इस पर लफ्ज के कलिमे के अहकाम जारी करने थे, इसलिए उसका एतबार करना पड़ता है और हुक्म लगा देते हैं। तो इसमें क्या है एक कलिमा छुपा हुआ है, क्योंकि इजरिब और लातजरिब में बात वाजे नहीं थी, अब उसकी आगे वजाहत कर रहे हैं साहिब जामी भाई। कहते हैं फैन कुल्ल वाहिद मिन्हुमा तजम्मन कलिमतैनी, इसलिए क्योंकि इन दोनों में से हर एक मुतजम्मिन है दो कलिमों को। इहदाहुमा मलफूजतुन वल उखरा मनवियतुन। जी भाई देखिए, मैंने आपको बताया था कि नकिरा के बाद अगर जुमला आ जाए तो वह जुमला अमूमन उसके लिए सिफत बनता है। क्या बनता है? तो यहां तजम्मन कलिमतैनी, कलिमतैन नकिरा आया और आगे जुमला आया इहदाहुमा मलफूजतुन वल उखरा मनवियतुन। इहदाहुमा मुब्तदा है, मलफूजतुन उसकी खबर, एक उनमें से मलफूज है। वल उखरा मनवियतुन, उखरा मुब्तदा और मनवियतुन उसकी खबर। तवज्जो है, फिर देखो कलिमतैन आया नकिरा, उसके बाद एक जुमला आया इहदाहुमा मलफूजतुन, दूसरा जुमला आया वल उखरा मनवियतुन, ये उसी जुमले पर आतफ है। तो इहदाहुमा मलफूजतुन में इहदाहुमा है मुब्तदा और मलफूजतुन है उसकी खबर। मुब्तदा खबर मिलकर जुमला इस्मिया होकर ये मातूफुन अलैह, ठीक है। और वल उखरा मनवियतुन, वह हर्फ आतफ अल उखरा, ये मुब्तदा और मनवियतुन उसकी खबर। मुब्तदा खबर मिलकर यह पूरा जुमला इस्मिया होकर यह आतफ है माकबल वाले जुमले पर। और ये दोनों जुमले मातूफ आले और मातूफ मिलकर यह सिफत है किसकी, कलिमतैन की, किसकी कलिमतैन। और मौसूफ सिफत का तर्जमा कैसे करते हैं, मौसूफ से पहले ऐसा या ऐसी का लफ्ज लाते हैं। अब देखो तर्जमा सुनो, फैन नकुल लवाहिदिम मिनहुमा तजम्मन कलिमतैनी, इसलिए क्योंकि इन दोनों जुमलों में से हर एक मुतजम्मिन है, इन दोनों में से, यानी ये दोनों जो कलाम आए इजरिब और ला तजरिब, इन दोनों में से हर एक मुतजम्मिन है दो ऐसे कलिमों को। इहदाहुमा मलफूजतुन, कि उनमें से एक जो है वो मलफूज है, यानी उस पर हम हकीकतन तलफुज कर रहे हैं। वल उखरा मनवियतुन, और दूसरा मनवी है, यानी जिसकी नीयत की गई है, जिसका इरादा किया गया है, यानी जो हुक्मन कलिमा है। वह बैनहुमा इस्नादु युफीदुल मुखातब फाइदतन तामतन, और इन दोनों कलिमों के दरमियान ऐसा इस्नाद है जो मुखातब को पूरा फायदा दे रहा है, यानी इससे पूरी बात समझ में आ रही है। इजरिब, देखो इसमें बात पूरी समझ में आ गई कि पिटाई तलब की जा रही है, और ला तजरिब, इससे भी मुखातब को पूरा फायदा हासिल हुआ, पूरी बात समझ में आ गई कि पिटाई तर्क करने का मुतालबा किया जा रहा है। वह बैनहुमा इस्नादुन, और उन दोनों कलिमों के दरमियान इस्नाद हो। इस्नादुन नकेरा आया और उसके बाद युफीदु फेल आया, और मैंने बताया था नकेरा के बाद फेल आया तो उसके लिए अमूमन क्या बनता है, सिफत। वह बैनहुमा इस्नादुन युफीदुल मुखातबा फाइदतन तामतन, और उन दोनों कलिमों के दरमियान ऐसा इसनाद हो जो मुखातब को पूरा फायदा दे, यानी उसको पूरी बात मालूम हो जाए। तो बल्कि यूं करें, इसको भी सिफत बनाएं भाई उसी कलिमतैन की। तो कलिमतैन जो है यह है मौसूफ, इहदाहुमा मलफूजतुन, यह है यह सिफत है, लेकिन यह है मातूफुन अलै। वल उखरा मनवियतुन, इसका आतफ भी इस जुमले पर माकबल पर। और बैनहुमा इसनादुन युफीदुल मुखातबा फाइदतन तामतन, इसका भी यह भी मातूफ। तो इहदाहुमा मलफूजतुन यह है मातूफुन अलै, वल उखरा मनवियतुन यह है मातूफ अव्वल, व बैनहुमा इसनादुन युफीदुल मुखातबा फाइदतन तामतन यह है मातूफ सानी। मातूफुन अलै अपने दोनों मातूफों से मिलकर यह सिफत हो गई कलिमतैन के लिए। तो तर्जमा कैसे होगा, अब सुनो जरा तर्जमा। फइन्ना कुल्ल वाहिदिन मिन्हुमा तज़म्मना कलिमतैन, देखो इज़रिब और ला तज़रिब बज़ाहिर एक कलिमा थे, लेकिन इनके अंदर एक और कलिमा भी है जो हुक्मन है, जो नीयत में है। इज़रिब के अंदर क्या है, अंता, और ला तज़रिब के अंदर भी क्या है, अंता। तो बज़ाहिर देखने में एक कलिमा, लेकिन ये दरअसल दो कलिमे हैं, एक कलिमा है हकीकतन और एक है नीयत में। अब उसी को बयान कर रहे हैं, कहते हैं फइन्ना कुल्ल वाहिदिन मिन्हुमा तज़म्मना कलिमतैन। तो कलिमतैन है मौसूफ, और मौसूफ से पहले ऐसा या ऐसी का लफ्ज हम लाएंगे। फइन्ना कुल्ल वाहिदिन मिन्हुमा तज़म्मना कलिमतैन, इसलिए क्योंकि इन दोनों में से हर एक, यानी दोनों जुमले इज़रिब और ला तज़रिब, इन दोनों में से हर एक तज़म्मना कलिमतैन, ये मुतज़म्मिन है दो ऐसे कलिमों को। इहदाहुमा मलफूजतुन, के उनमें से एक मलफूज है, यानी उस पर तलफुज हो रहा है हकीकतन। वल उखरा मनवियतुन, और दूसरा कलिमा मनवी है, नीयत में है, यानी हुक्मन कलिमा है। वह बैनहुमा इसनादुन युफीदुल मुखातब फाइदतन तामतन, और इन दोनों कलिमों के दरमियान ऐसा इसनाद है जो मुखातब को पूरा फायदा दे रहा है। बात समझ में आ गई, चलिए बस करें बस। बेहादा हुआ अल मराम, अल्लाहु आलम बिहकीकतिल कलाम।